में हम सब क्या देखने वाले हैं, किस तरह से ये इस्लाम शुरू होता है और कैसे होता है, और अगर टेक्स्ट के एतबार से देखें तो हमारी आज की जो आयात है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किबले की तब्दीली के मौके पे जो रिस्पांस हुआ था उसी से मुतल्लिक है। दूसरे पारे के बिल्कुल शुरू से हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने शोर मचा दिया, पहले किबला इधर था, उधर क्यों हुआ, ये सारी बातें आप सबको समझ आती हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है, या नोट कीजिएगा आप, लिखिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं लगाएंगे ना तो मानी बदल जाएगा, क्योंकि अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है ला और एक होता है लैसा। ला का मानी है नो ओनली, यानी सिर्फ कहते नो यू डोंट डू दिस, लेकिन लैसा में शिद्दत है, सिर्फ यही नहीं है, यानी तुमने जो दीन के नाम पे इतने झगड़े शुरू कर दिए, मशरिक की तरफ मुंह करो, मगरिब की तरफ मुंह करो, किसकी तरफ करो, तो याद रखो कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ होता है कि मगरिब की तरफ होता है, तो फिर अगली बात क्या है, फिर नेकी है क्या? सवाल पैदा होता है ना कि नेकी ये नहीं है, लैसल बिर्रा ये नेकी नहीं है, अन तुवल्लु वुजूहकुम कि तुम फेरो अपने चेहरों को किबल अल मशरिकी मशरिकी तरफ या मगरिब की तरफ, यहां पर निगेट किया गया, रद्द कर दिया कि नेकी सिर्फ बहसों में पड़ने का और एक लाइन खींचकर उसके ऊपर चलने का नाम नहीं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि नेकी क्या है, तो कहा वलाकिन अल बिर्रा, बल्कि असल नेकी तो उसकी है। अब यहां से 1 2 3 करके स्टेप्स लिखेंगे आप, किसी को नेक बनना है, किसी को मुसलमान बनना है, किसी को अल्लाह का प्यारा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, नंबर 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, नंबर 1 जिसको रूट कहेंगे, मन आमना बिल्लाह, पहले अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह कौन है, कैसा है, मेरा उससे ताल्लुक कैसे होगा, अल्लाह की बात पे ईमान। जब मन आमना बिल्ला हुआ तो अल्लाह पर भी ईमान तो अल्लाह की बात पर भी ईमान, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मोहब्बत, हुब्बे रब्बी, अल्लाह से प्यार, फिर वल यौमिल आखिर, नंबर 2 लिख लीजिए। मैं खुलासा करा रही हूँ, हालांकि इस आयत में से बहुत कुछ हम अभी समेटेंगे दोबारा, लेकिन सिर्फ अपने जहन को साथ चलाइए, इस आयत के साथ साथ रहिए, इधर उधर ना झूमे घूमे कि आपकी सोच भटक जाए, ठीक है? पहली चीज अल्लाह की मार्फत, सबसे पहले दिल को अल्लाह की मार्फत हो, फिर वल यौमिल आखिर, क्यामत के दिन पर ईमान, और वो ईमान क्या है? नंबर 1, हम सबको मौत आनी है, इस पे तो सब ईमान लाते हैं, मोमिन काफिर फासिक फाजिर, ना ईमान लाने की गुंजाइश ही नहीं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं। लेकिन यौमुल आखिर का दूसरा स्टेप क्या है कि मरने के बाद इंसान जब कब्र में डाला जाता है कुछ खास रिचुअल्स करने के बाद, तो उसको उसके आमाल की बुनियाद पे उसका जन्नती होना या जहन्नमी होना दिखाया जाता है, और एक खास वक्त वो बंदा अपनी कब्र में गुजारता है जिसमें उसका जिस्म कब्र में रहता है लेकिन उसकी रूह सोल स्पिरिट अल्लाह के पास चली जाती है। रूह के रहने की 2 जगह हैं, या जन्नत या जहन्नम, स्वर्ग या नर्क जिसको लोग बोलते हैं। अगर दुनिया में अच्छे काम करता था तो उसकी रूह को जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, उसके साथ अच्छा मामला होता है, और अगर बुरे काम करता था तो जहन्नुम, जो जमीन के नीचे है, गहरी खाई, उसमें डाल दिया जाता है, उसको जन्नत और जहन्नुम दिखाई जाती है, फिर वापस उसकी रूह को उसके जिस्म में डाला जाता है कब्र में, वहां मुनकर और नकीर आते हैं, उसका हिसाब लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको जिंदा किया जाता है। अगर नेक था तो उसको जन्नत कब्र में पता चल जाता है कि मैं नेक हूं, जैसे अभी आपने टेस्ट दिया ना, सबको पता कैसा हुआ, कोई थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, नहीं लगी पता, वो पता लग जाएगी नंबर से के, लेकिन अमूमन सबको टेस्ट देते खुद ही अपना रिजल्ट पता होता है। इसी तरह मरते ही एक इंसान को अपना हिसाब किताब पता होता है, लेकिन उसकी रूह के साथ वो मामला करके दिखा दिया जाता है। नेक है तो उसकी रूह जब आसमान पे ले जाई जाती है तो सातों दरवाजे काट गुजार के वो आगे अल्लाह ताला के अर्श के आगे झुक जाती है, उसको जन्नत में सैर करा दी जाती है, छोटा सा एक टूर दे दिया, फिर वापस बुला लिया, फिर उसकी रूह को जिस्म में डाल दिया, उतनी देर में उसका कफन दफन नमाज जनाजा हो चुकी होती है। फिर वहां उसको जन्नत में कब्र में तीन सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप नोट करें ना तो मैं सिर्फ अल यौमिल आखिर पे आपको मुस्लिम क्रीड अबाउट हेयर आफ्टर का खुलासा दे रही हूँ इस वक्त। अगर आप छोटे छोटे जुमलों में, ये छोटी बच्चियां भी लिख सकती हैं, कोई आपसे पूछ रहा है तो वो यही है जो मैं आपको चंद लफ्जों में बता रही हूँ। इस पे पूरी किताबों की किताबें बाद में आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जन्नत में या जहन्नम में जाने वाले कब्र में जब आते हैं उनकी कब्र में उनका हिसाब होता है। तीन सवाल कब्र में पूछे जाते हैं मैयत से। पहला सवाल मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन था? फर्स्ट एंड एवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज योर लॉर्ड, अल्लाह कौन था, रब कौन। अब अगर दुनिया में बता था रब कौन है तो ही जवाब देगा ना, और रब की बात मानी थी तो है। और अगर किसी ने भगवान के नाम पे पत्थर को पूजा, भगवान के नाम पे पीपल के पत्ते को पूजा, तो कितने करोड़ 33 करोड़ खुदाओं के नाम थोड़ी याद रहेगा। तो रब एक है, रब उसको याद रहेगा जिसने दुनिया में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, अल्लाह के बारे में उसकी सवालत। सेकंड क्वेश्चन, मर रसूलु का, तेरा रसूल कौन था? इस पे आज बात होगी इंशाल्लाह सबक में, रसूल की हकीकत कौन था, उसने क्या कहा, उसकी जिंदगी कैसी थी। ना तो कब्र में सवाल किसी पीर के बारे में होना है, ना बुजुर्ग, ना इमाम, ना उस्ताद, ना स्कूल, ना मदरसा, ना किस फिक्र से ताल्लुक रखते थे, किस ग्रोह से ताल्लुक थे। एक सवाल है कि तुम्हारा इमाम कौन था, और हमारा इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा और आखिरी सवाल कब्र में, मा दीनो, अगर इस्लाम था तो कहेगा दीनी अल इस्लाम, और अगर इस्लाम की जगह चूचू का मुरब्बा था, सारी दुनिया की चीजें जोड़ के एक अपनी मर्जी का मसलब बनाया हुआ था, तो वहां लफ्ज इस्लाम या अल्लाह या रसूल नहीं आएगा। जब ये तीन सवालों के जवाब मरने वाला दे देता है तो हदीस में आता है कि फिर आवाज आती है आसमान से कि ये बंदा कामयाब हो गया, आप इसको सोने दो, ये बहुत काम करके आया है। आज की आयत आप पढ़ेंगे, दीन इस्लाम सिर्फ लिप सर्विस का नाम नहीं है, कुछ करने का नाम है। जैसे कोई काम शुरू करें तो फिर काम करना पड़ता है। अल्लाह ताला फिर फरिश्त उस मैयत को सुला देते हैं, नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि ये मेहनतें करके आया है, ये अल्लाह के दीन के लिए, अपनी जात पे अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया में बंदों को आग से बचाने के लिए दिन रात मेहनतें करता था, अब इसको सोने दो। और उसको कहा जाता है कि अब इंतजार कर क्यामत का, जब तुझे असल वो जन्नत मिलेगी जो आसमानों पे जो तुझे दिखाई है। और उस वक्त उस मैयत की ख्वाहिश होती है कि जल्दी से क्यामत आए और वो खूबसूरत जन्नत जो आसमानों पे देख आया हूँ मैं उसमें जाऊँ। हाँ, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, लज्जत, रोहम व रैहान, और क्या कुछ कुरान में आप पढ़ते हैं सूरत वाकया, और उसमें तो ये तो है नेक का अंजाम। फिर उसकी रूह खैर में होती है। इसके बरक्स जिस बंदे की जिंदगी में इस्लाम नहीं, दीन नहीं, रब नहीं, और रब है भी तो मन चाहा रब, पत्थर का खुदा रब है या पानी की बोतल रब है, तो क्या करेगा वो, उसको उस वक्त लफ्ज अल्लाह कहना ही नहीं आएगा, उसको रसूल का नाम नहीं आएगा, उसको इस्लाम का नाम नहीं आएगा, लिहाजा फिर उसके साथ भी ऑपोजिट मामला होगा, उसकी रूह को कब्र में से जहन्नुम में डाल दिया जाता है, और कब्र में जहन्नुम का एक अजाब शुरू हो जाता है, अल्लाहुम्मा ला तअज्जलना मिन्हु। और उसकी ख्वाहिश होती है कि कभी क्यामत ना आए, क्योंकि उसको आगे वो बहुत बुरा अजाब दिख रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा, सबकी रूहें अपने अपनी जगहों पे पहुंच गई। फिर एक दिन इस इंसानियत की मौत आएगी, एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिसको क्यामत कहते हैं। ये दुनिया अल्लाह ने एक मकसद से बनाई, जब वो मकसद पूरा हो गया सब लोग इस दुनिया में से अपने हिसाब से चले गए, अब कयामत के बाद सारी इंसानियत अपनी कब्रों से उठाई जाएगी। कैसे उठाई जाएगी, सवाल पैदा होता है, जैसे माँ के पेट से बच्चे को निकाला था, मुश्किल है हमारे लिए तो मुश्किल है, लेकिन दिन रात देखते हैं ना, तो जिस तरह माँ का पेट एक कब्र ही है ना छोटी सी, उससे इंसान निकले तो इस बड़ी दुनिया में आ गए। माँ के पेट के बच्चे से पूछो कि दुनिया क्या है, तो कहेगा ये दो चार बालिश की जगह, कुछ खून है, कुछ पस है, कुछ पानी है, कुछ अंतड़ी है, माँ का पेट यही है ना। उसको वहां कहते हैं नियाग्रा फॉल को चीज है, उसको कहते हैं कि पहाड़ एक चीज है, समंदर है, वो नहीं मानता ना, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। उसको वो जो मामला था ना, हमें दुनिया में आने से, दुनिया में आने से पहले नहीं पता था दुनिया में क्या है। इस तरह इस दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत के मनाजिर पता ही नहीं। माँ के पेट की कब्र फटी तो हम इस दुनिया में आ गए, तो जब इस असल कब्र से निकलेंगे हम सब एक नई दुनिया में होंगे। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन कुरान में बहुत आएगी आगे जाके। नतीजा क्या है, क्यामत के दिन यौम यकूम अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, लोग अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, हम सब खड़े होंगे। तीन सवाल कब्र में पूछे गए, पांच सवाल आखिरत में पूछे जाएंगे उस मैदाने महशर में। पहला सवाल, उम्र कहाँ गुजारी, जिंदगी कहाँ गुजारी, वेयर डिड यू स्पेंड योर लाइफ, अन उम्री ही फी मा अफना हो। दूसरा सवाल जी, उम्र कहाँ गुजारी, जिंदगी कहाँ गुजारी, क्या करके आए हो, क्या करतूत किए हैं, तुम्हारे काम क्या थे। और दूसरा, अन शबाब ही, जवानी कहाँ गुजारी, हालांकि ये उम्र के अंदर आता है ऐसा, लेकिन अक्सर लोग जवानी में गाफिल होते हैं, मस्त होते हैं, क्योंकि जवानी दीवानी और अजीबो गरीब नाच गाने का नाम जवानी रख दिया। तीसरा सवाल होगा क्यामत के दिन, अन मालिन, माल के बारे में, मिन ऐनक तसबहु, कहाँ से कमाया अपना माल, ये जो खाना पीना खाते थे, कपड़े पहनते थे, ये किसके कहाँ से आते थे। और चौथा सवाल होगा, मिन ऐना अनफकहु, कहाँ खर्च किया। और पांचवा और आखिरी सवाल, माजा अमिला बिमा अल्लमा, जो इल्म हासिल किया वो उस पर अमल कितना किया, जो इल्म था, जो मालूम था, उस पर अमल कितना किया। हदीस में आता है कि इन पांच सवालों के जवाब दिए बगैर किसी को क्यामत के मैदान से हिलने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा वल यौमिल आखिर, आखरत का दिन। ये तो है इस्लाम का अकीदा, क्यामत के दिन फिर पलड़े तुलेंगे, जब सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, नेकियां और बदियां, आमाल नामे मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने होंगे, और नेकियों वाले जन्नत में और बदियों वाले जहन्नुम में चले जाएंगे। ये तो है आखरत का अकीदा। बातिल लोगों ने इस अकीदे में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी, और वो क्या कि होगी क्यामत, होगा हिसाब, लेकिन फुला आएगा मेरी बख्शीश कर देगा, फुला आएगा सिफारिश करवा देगा। पीछे पढ़ चुके हैं ना बनी इसराइल के नाते से, पांच खराबियां उनमें आ गई थी, तो कल ला तजी नफ्सुन नफ्सन शय्य वला अमरु यौम इज़िल्ला, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो क्यामत के दिन पर ईमान, ठीक ईमान, ये ईमान नहीं कि हमारी मर्जी का एक दिन आना है क्यामत का, और फलां आएगा तो बख्शा लेगा और फलां बचा लेगा और किसी को कुछ, तो वल यौमिल आखिर, बंदा मोमिन का ईमान हो कि मरने के बाद मुझे कब्र से उठाया जाएगा, फिर जन्नत या जहन्नम। बस अभी आपके लिए इतना ही काफी है। तीसरी मंजिल पे चलिए, नंबर थ्री लिखिए, वल मलाइकाती, फरिश्तों पर ईमान लाए। फरिश्ते कौन है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। और अगली बात फरिश्तों के बारे में नोट कर लीजिए कि बंदों के मददगार हैं, नजर नहीं आते इंसान से, नूर से बने हैं। इंसान किससे बना, मिट्टी से बना, फरिश्ते नूर से बने, शैतान बना नार से, आग से, फरिश्ते बने नूर से। फरिश्तों के बारे में अगली चीज अपने अकीदे में डाल लीजिएगा कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। और ये जुमले जो मैं बोल रही हूँ ना, बड़ी कोशिश करके छोटे, इसको एक लाइन में सिर्फ एक जुमला लिखिएगा, पैराग्राफ की सूरत में ना लिखिएगा, वरना आपको कई पॉइंट मिस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फरिश्ते जो हैं हर काम के ऊपर मुकर्रर हैं, यानी मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई बारिश बरसाते हैं, तो कोई बच्चे को पैदा करने में मदद देते हैं, तो कोई वही लेके आते हैं, ठीक है। और फरिश्तों का हिसाब किताब नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर नो कहने का मादा नहीं है। ऐसे ही जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दें तो उसको चलना ही चलना है, विल पावर नहीं है फरिश्तों के पास। और फरिश्ते का यहाँ ताल्लुक एक खास जरिए से भी आ गया कि फरिश्ते के जरिए से ही अल्लाह का कलाम बंदों तक पहुंचता है, ठीक है, तो अगली दर्जे पे चलिए, नेक्स्ट स्टेप, वल किताब और किताब परिमाण। किताब कौन सी किताब? नबी के ऊपर जो किताब उतरी, नहीं आज तो कुरान है, हजरत इब्राहिम पे जो उतरी थी सहीफे, उनकी किताब, तौरात के वक्त में तौरात, जबूर के वक्त में जबूर, ठीक है। तो किताब से मुराद सारी किताब, अगर आप यहां देखें ना, किताब से पहले अल लगा हुआ है, अल किताब, ये ऐसी जैसे इंग्लिश में एक होता है लफ्ज बुक, कोई भी बुक, लेकिन आप कहते हैं ना द बुक, तो द बुक के खास बुक, तो यहाँ के अल किताब, अल्लाह की लिखी हुई तशरीहात नहीं, इजाफे नहीं, बल्कि इल्हामी किताब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, व नबीजीन, और नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान। नबी कौन होते हैं? नंबर एक, लिखिएगा, अकीदे की बात है इसलिए बहुत केयरफुल हूं मैं, नंबर एक नबी इंसान होते हैं, नंबर टू नबी भी मट्टी से बने होते हैं, नबियों के अंदर भी वही दिल जिस्म रूह होती है जो हम इंसानों में होती है, लेकिन नबी खताओं से पाक कर दिए जाते हैं। कुराने पाक में आप पढ़ेंगे कि नबियों से भी खताएं हुई, लेकिन वो नबुवत से पहले थी, जैसे हजरत मूसा से कत्ल तक हो गया खता के साथ, नबुवत से पहले। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल चख लिया, नबुवत से पहले था। तो पता क्या चला कि बड़े से बड़े गुनाह करके आए हुए लोग भी कभी मायूस ना हो। अल्लाह गुनाहगारों को जब नबुवत दे सकता है, तो हम जैसे गुनाहगारों को कुरान नहीं दे सकता? अल्लाह माफ कर देता है सब कुछ। और नबियों पर ईमान के साथ साथ जहन में रखिए कि नबी रोल मॉडल होते हैं, उसवे हसना होते हैं, उनके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए लाजिम होता है, और नबी एक क्राइटेरियन होते हैं, फुरकान, मेयार। मसलन आप देखिए कि ये ग्लास है, हम पानी पीते हैं ना इस ग्लास में, इस ग्लास का टोटल हजम कितना है? मे बी 1 लीटर, सपोज कर ले आप, इस ग्लास में 1 लीटर पानी आता है, बिलफर्ज अगर आप इस ग्लास में 1.25 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? 1 पाव लीटर बाहर गिर जाएगा, ठीक है। यही नबी है। दीन कितना है, कहाँ है? नबी की सूरत में आएगा, नीचे से पतला ऊपर से बड़ा। अगर इसमें आप 2-3 और बम डाल दें, कोई झोल डाल दें, तो अगर इसमें पानी डाल के इसको फ्रीजर में रख दें, तो जब आप निकालेंगे ना ठंडा करके, तो ग्लास का ग्लास एक बर्फ का बनेगा। ये है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। नबी एक पूरे का पूरा स्केल्टन होते हैं। क्यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे आमाल को नबियों के सांचे में ढालेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चलता फिरता नमूना रोल मॉडल की सूरत में, क्योंकि किताब तो पढ़ी जाती है, नबियों को पढ़ा नहीं जाता, नबियों को देखा जाता है, और नबियों के साथ मामला इस तरह से होता है कि उनको देखते जाओ और अमल करते जाओ। किसी काम का नेकी होना क्या है कि वो काम नबी ने किया हो? एक होता है अच्छा काम और एक होता है नेक काम, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं आपको इसकी थोड़ी सी अभी डिस्क्रिप्शन मजीद अलग से दूंगी ना, तो उसमें इसको क्लियर करूंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो काम कयामत के दिन हमारे नबियों के सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे, वो काम रिजेक्टेड हो जाएंगे। अभी इतने ही करें, फिर आगे चलते हैं। नबी की बात हो गई, उसके बाद नेक्स्ट थिंग देखिए, व आतल माला अला हुब्बिही, कितना नंबर आया? 6 नंबर। और माल को दे दे उसकी मोहब्बत के बावजूद, एक मानी तो इसका ये है, हुब्बिही की जमीर माल की तरफ करेंगे, तो मतलब क्या कि माल से बंदे को प्यार होता है, सीधी सी बात है। इस प्यार के बावजूद सारा माल खुद नहीं रखना, बल्कि किस किस को दे दो? ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो, बेटे हो तो माँ को भी हिस्सा दो, बाप को भी दो, बीवी को भी दो, शोहर को भी दो, गरीब भाई बहनों को भी दो। तुम्हारे खानदान में लोग पिस रहे हैं खाना नहीं, और तुम एक एक जोड़े पे हजारों लगा देते हो, तुम एक एक जूते पे हजारों लगा देते हो, तुम्हारे खानदान में कितने भूखे हैं? तुम्हारे एक जोड़े की कीमत में हो सकता है किसी का पूरे 1 महीने का राशन हो जाए। ये मुराद है कि अपनी जात पे लगाते हुए पेटी ना भरे और दूसरे को देने को दिल ना खुले, ये है अला हुब्बिही। फितरी तौर पे नल इंसान नल हुब बिल खैरी ला शदीद, बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। और अल्लाह कहते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इन्नहु अला जालिका लशहीद। बंदे को पता है कि उसको माल से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ने हमें माल क्यों दिया कि अपनी जरूरियात भी पूरी करें और इसके साथ अपने गरीबों को भी दें, रिश्तेदारों को दें, फिर वल यतामा यतीमों को भी दो, पिसे हुए लोग जिनका कोई बुरसाने हाल नहीं, जो मुआशरे से कट जाते हैं और जिनके पास गुर्बत की वजह से चीजें देर से मिलती हैं, जिनको चीजें नहीं मिलती और इनसे वापसी में कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं होती। इंसान अपने ही जैसे रिश्तेदारों को कुछ देता है ना, तो कहता कोई नहीं आज देंगे कल मिल जाएगा, आज एक हाथ से देंगे बल्कि कल को बढ़ता वही देगा। हाँ, इन मिस्कीनों ने तो कुछ नहीं देना, यतीमों ने नहीं देना। यह है इस्लाम का असल रूप, कि इस्लाम उन लोगों पे खर्च करने की दावत दे रहा है कि जिनको जिनसे वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। और नेकी होती वो है कि जिसके रिटर्न में बंदा बंदों से कुछ नहीं मांग रहा होता, ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि वल मसाकीन, और मिस्कीनों को दे। मिस्कीन कौन होता है? हैंड टू माउथ, सकना रुक जाना, मस्कन घर को कहते हैं ना। तो मिस्कीन वो होता है जिसको लगता है गुर्बत की वजह से महीना ही रुक गया है। कभी आपने कुछ सफेदपोश लोगों को देखा होगा महीने के आखिरी दिनों में, फिर वो देख रहे होते हैं हाथों की तरफ, डेट देखते हैं कब महीना खत्म, अच्छा कब तनख्वाह आएगी। हमें तो कभी इन चीजों में अल्लाह ने डाला ही नहीं ना कि किसी के घर में कोई इस तरह, हमारे तो हर वक्त ही आता है और हर वक्त ही जाता है। कभी सच बताएं, खाना पकाते हुए आप हमने सोचा कि महीने के शुरू की तारीखें हैं तो गोश्त ले आए और आखिरी तारीखें हैं तो दाल ही बना लें, कभी सोचा मैंने और आपने? और मैं आपको पूरे शऊर और शरह सदर से कह सकती हूँ, हम सब के रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होंगे कि आखिरी हफ्ता महीने का फिर वो बस बच कुछ कर रहे होते हैं। ये लोग हैं मस्कीन, जो अपनी गुर्बत छुपाए, कोई मेहमान चला दे अपनी इज्जत रखने के लिए, उसको जो महीने की चीजें जमा करके रखी थी खिला दे और शो ये करे कि नहीं बहुत है खा लेंगे, और बाद में घर वालों से कि कोई बात नहीं 4 दिन भी दाल पका लेंगे तो क्या है, 3 दिन तो आगे ही पकती थी हफ्ते में। ये है मिस्कीन। इस्लाम कहता है कैसे बिसे हुए लोगों को ढूंढो और इनको दो। और याद रखिए कि ये जुर्म अजीम है कि किसी सोसाइटी में कुछ लोग तो अपने खाने के बाद जाया करें और कुछ लोग बेचारे गुर्बत की वजह से जाने दे रहे हो। ये आज इस्लाम नहीं है जो हमें इर्द गिर्द दिखता है। बहरहाल आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप, वबन सबील। अगर इसका मैं लफ्जी तर्जमा करूँ ना, तो इबन कहते हैं बेटे को, अभी आपने वजाहत में भी सुना, और सबील कहते हैं रस्ते को, रास्तों का बेटा। क्या मतलब है? जो बहुत ज्यादा सफर करे, ट्रेवलर। इस्लाम में अरबों में कल्चर था कि जब कोई काम बहुत ज्यादा करता था ना, तो उसको उसका बेटा कह देते थे, जैसे इब्ने दुनिया, हाँ दुनिया का बेटा, बहुत दुनिया से प्यार करने लगे लोग कहते हैं। तो यहाँ मुराद है मुसाफिर। अब मुसाफिर में आप देखिए क्या क्या होता है, घर में करोड़पति भी हो सकता है बंदा, लेकिन सफर में जेब कट गई। आज तो मशहूर पास मौजूद है ना, 10-10 कार्ड होते हैं जेब में, और टेलीफोन और पेजर है और एटीएम मशीनों के नंबर याद है। ये उस दौर की बातें हैं कि जब लोग सहराओं में रास्ते भटकते थे तो मर जाते थे भूख की वजह से। तो कहा ऐसा मुसाफिर जिसके पास कुछ है ही नहीं या था और अब है नहीं, इवन उसको ज़कात भी दे दो, वो बाद में जाके तुम्हें चीजें पैसे वापस भी कर सकता है अपने ठिकाने पे पहुंच के, लेकिन आज वो मुसाफिर है। और आपको पता है कि सफर में हमेशा चीज कम हो जाती है। आप गिन गिन के लेके जाते हैं ना, जोड़े भी, कपड़े भी, जूते भी, फिर आप पैसे भी कहते हैं इतने होंगे, कोई इमरजेंसी पड़ गई, हो सकता है वो 15 दिन का खर्चा 1 हफ्ते में पूरा हो गया। तो हैंड टू माउथ होता है। कभी हज पे गए और जहाँ लिमिटेड मनी लेके जाने की इजाजत हो, तो आप फील करेंगे कि एंड पे बंदा परेशान होता है, बिल्कुल कहा कि उनको दो तुम। उसके बाद अगली कैटेगरी देखिएगा, वसाइलीन और सवाली। ये कौन लोग हैं? जो सवाल कर लेते हैं। साइल से मुराद वो शख्स जो मदद के लिए हाथ फैलाए, बस मजबूर होते हैं फिर हाथ फैलाते हैं, कुछ आधी साइल भी होते हैं। जो मजबूरियों में सवाल करे उसको तो फौरन दो, और जो आदतन जिसको बैगर्स कहेंगे आप, बैगिंग करें, उसको समझाओ, नरमी से बात करो कि मेहनत मजदूरी कमाओ से कमाओ। अल्लाह के नबी के पास एक दफा एक शख्स ने सवाल किया, आपने उसको कुछ दिया, फिर अगली दफा फिर उसने सवाल किया तो आपने उसको कुछ नहीं दिया बल्कि कुल्हाड़ी खरीद के दी, कहा कि इसको कुल्हाड़ी दो, फिर कहा मेरे साथ। फिर जंगल में ले गए, फिर जंगल में जाके उसको कहा कि आओ लकड़ियां काटो, फिर जब लकड़ियां काटी कहा चलो इस गट्ठड़ को लेके बाजार में चलो, वहां गए जाके कहा उसको बेचो, तो कुछ पैसे मिल गए ना, तो आपने उसको हुनर सिखा दिया। तो सवालियों को खराब करने के बजाय उनके कोई रोजगार का इंतजाम कर दो। फिर अगली कैटेगरी देखिएगा, वो फिर रकाब और गर्दनें आजाद कराने में। रकाब गर्दन को कहते हैं, रकाबा गर्दन आजाद करना, उनक कहते हैं गर्दन को, यानी जो नेक होती है हमारी वो नेक है, ये रकाबा फर्क है। जैसे कहते हैं ना कि किसी की गर्दन पे हाथ डाल लेना क्या होता है, उसको अपने कब्जे में कर लेना, तो ये गुलामों की तरफ इशारा है। जब इस्लाम आया था दुनिया में नबी सल्लम के दौर पे, जब उसकी कैफियत थी पूरी दुनिया गुलामों से भरी हुई थी। ये तो आज अगर दुनिया में स्लेवरी नहीं है अपेरेंटली, तो ये इस्लाम का एहसान है। इस्लाम में इतने खूबसूरत तरीके से गुलामी को खत्म किया गया, जैसे शराब खत्म कर दी मुसलमानों में, इस तरह गुलामी खत्म कर दी, आजाद करवाओ, इतनी रग़बत दिलाई गई कि इनके एक एक उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से आजाद कराएगा, तो कहा कि फिर गुलामों को आजाद कराओ। अब आज तो गुलाम नहीं मिलते, तो फिर आज कहाँ लगाए, जेलों में वो कैदी जो बेगुनाह है मारे गए, किसी और के जुर्म की सजा में है, कुछ सियासी कैदी हैं, इस तरह के वो लोग हैं, उनको आजाद कराओ। नेक्स्ट, वह अकाम असला, इतने हकूक उल इबाद पूरे करने के बाद अब कहा वह अकाम असला, और इस्लाम में क्या आता है, नमाज कायम करो। एक होता है नमाज पढ़ो, उसके लिए क्या लफ्ज आना चाहिए था, यकरा या इकरा, इकरा सलात, इकरा का लफ्ज सबको पता है कि पढ़ने के लिए, यहां पढ़ना नहीं है, अकाम। और अकाम यकीमु, यकामत उन कहते हैं कायम करने को, इस्टेब्लिश करने का मानी इंग्लिश में, यानी नमाज इनफरादी तौर पे तुम पढ़ो कुछ रिचुअल्स के साथ, दिन में 5 बार फर्ज है, फिर सुन्नत है, नफिल है, फिर बहुत सारी नफिल नमाजें हैं, जनाजे की नमाज है, कोई मर जाए तो पढ़ो, दुख के वक्त में, गम के वक्त में पढ़ो, इस्तखारे की नमाज है। लेकिन यहाँ नमाज को कायम करने से मुराद सिर्फ जाहरी नमाज नहीं है, वो तो है ही, लेकिन असल ये कि इस नमाज को अपनी जिस्म पे कायम करो, तुम्हें देख के लगे कि तुम नमाजी हो, अगर फिर नमाज जाए नमाज से उठने के बाद भी तुम अल्लाह के बंदे रहो। और खास तौर पे या काम असलात से मुराद वो मुआशरे कायम करना है जहां नमाज का असर दिखे। इन नसलात तनहानिल फख्शाई वल मुनकर, 21वें पारे की पहली आयत है कि बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। ठीक है, फिर आगे चलिए, बात ज़कात, मिनिमम थिंग्स, नमाज पढ़ ली 5, फिर ज़कात दो। ज़कात क्या है, फर्ज़ ज़कात 100 पे 2.5, नोट कीजिएगा, बहुत गलत फहमी है हमारे यहाँ कि मैंने आज 100 रुपये अगर मुझे कहीं से मिले तो मुझे उस पर 2.5 रुपये ज़कात देनी पड़ेगी, रॉन्ग, गलत है। आज आप इस वेस्टर्न स्टाइल से समझिए, जो पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे अपने मुल्कों में गालिबन यही होगा, इनकम टैक्स किस चीज पे आता है, आपकी पे आता है, आपने क्या कमाया। नॉर्वे का तो मुझे याद है कि शायद 30, 40, 50% तक टैक्स में कट जाता है। अगर आप यहाँ किसी जगह जॉब करते हैं ना, तो आपके पास चेक में से मेरे हाले टैक्स कट के आता है, ऐसे ही इधर भी जी। क्या स्टाइल है आज दुनिया का कि आप खड़े रहे कमाते रहे, आपको उन्होंने कहा जी आपकी इतनी पे है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास 2/3 भी नहीं आई, वजह कह दी बाकी टैक्स में कट गई। इस्लाम का मिजाज बिल्कुल ऑपोजिट है, इस्लाम में जकात कमाई पे नहीं है, आप 100 कमा, जुल्म की हद है जो आज हम जिस चक्कर में पिसे हुए, ये दूसरे तीसरे बारे में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा इस पे इकोनॉमिक्स ऑफ इस्लाम, तो आपको देखेंगे कि किस तरह आज हम कौमी सतह पे और माशरती सतह पे हम कैसे गुलामों बने बैठे हैं। बहरहाल इस्लाम क्या कहता है, आप 100 कमाते हैं, 1,000 कमाते हैं, लाखों कमाते हैं एक महीने में, हलाल से जायज से कमाते हैं, सारा आपका, आप सारे का सारा अपने ऊपर लगा लें, गरीबों को ये सारी कैटेगरीज में बांट दें, थोड़ा बहुत अपने लिए बचा भी लें, नो प्रॉब्लम। ज़कात क्या है, पूरा साल एक चीज जो आपके पास रहती है, यानी आपको आसानी से बता दूं कि इस्लाम में ज़कात अर्निंग पे नहीं है, सेविंग्स पे है, जो माल सेव किया आपने किसी भी सूरत में, कैश एंड क्रॉप, प्रॉपर्टी, या कोई ऐसी चीज जो इन्वेस्ट के तौर पे, उस पे कितना, 100 में 2.5, देखिए 97.5 आपके हाथ में रहते हैं, 2.5 अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में दे दो, क्या ज्यादती है? जिसने इतना दिया वो कहता है 100 में 2.5 दे दो, तो कोई मुश्किल है? ये मिनिमम है, इस पे रुकना नहीं। आपका दिल चाहता है, आप नबी सल्लम की तरह सारी जिंदगी आपने ज़कात ही नहीं दी, भला क्यों नहीं दी? सेविंग की कोई नहीं थी, इधर से आता था उधर चला जाता था। ये नहीं था इस्लाम वालों का मिजाज कि वो अगली नस्लों के लिए भी जोड़ जोड़ के रखे। एक वक्त में लोगों को खाना ना मिले और हम अगले 10 साल के लिए सोच के रखें, गुरबत के मारे पिसा पड़ा है, मस्जिदें अधूरी पड़ी हैं, दीन वालों के लिए जगह कोई नहीं, अधूरी है, टूटी है, फूटी है। वो कहते नहीं, हमने अपने बच्चों के घर के लिए पैसे जोड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता, ये इस वक्त रियल पिक्चर नहीं है इस्लाम की। उस वक्त तो आप हालात सुनते ही हैं, पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, कि अबू बकर अपने घर का ही सामान पूरा ले आए, क्योंकि इस्लाम को बचाना था ना तबुक के मौके पे। हजरत उमर आधे घर का सामान ले आए, अब्दुलरहमान बिन औफ ने उठ उठ के इतना माल दे दिया, हजरत उस्मान ने 9 दफा 100 100 ऊँटों पूरे सामान के लदे हुए दे दिए। वो मिजाज था, और असल इस्लाम ऐसे ही होता है, आज भी असल मोमिन ऐसे ही होता है, उसके पास जो कुछ है उसके रब का है। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरी बीवी, मेरे भाई बहन, सबको दे रहा हूं, लेकिन अल्लाह जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना वो तेरा है, मेरी जिंदगी में भी तेरा है, जहां मौका मिला सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा, और मेरे बाद तो वो है ही तेरा। ये मिजाज इस्लाम ने दिया था कि फिर सहाबा कराम जब मरते थे तो 17 दिरहम, एक सहाबी थे जब मरे तो खौफ का शिकार है कि माल पीछे छोड़ के जा रहा हूं, मेरा क्या बनेगा। और कहते हैं जब बाद में उनका विरसा जमा किया गया तो 17 दिरहम का बना, 17 दिरहम था, और वो इस हालत पे अफसोस करते हुए मरे कि मैं अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वजीफा लगा हुआ था, गवर्नमेंट का काम था, कमाना था ना, कपड़े का काम करते थे पहले, लेकिन जब दीन की जिम्मेदारियां पड़ी तो वो कैसे करते, फिर आमदनी कमाने जाते तो फिर खिलाफत की जिम्मेदारियां कैसे करते। फिर उनका वजीफा मुकर्रर हुआ, और उसमें से भी इस तरह वो अपनी बीवियों के ऊपर नजरें रखते थे कि मीठा क्यों पका लिया, ये तो कहानी और है, हमने तो कभी ना सुनी ना देखी, हमने वो खूबसूरत किरदार ही नहीं देखे आज तक। कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो शहजादे थे, और जब खलीफा बने उनका वजीफा मुकर्रर हुआ, सूख के कांटा हो गए थे, कांटों बदन में तो लहू नहीं, कहते हैं कि उनकी स्किन के ऊपर गोश्त रह नहीं रहा था, हड्डियों पे खाल आ गई थी, इस खौफ से कि ये पैसा दी, अल्लाह का पैसा, हुकूमत का पैसा, लोगों का पैसा, मेरे से इसकी जवाबदेही होगी। और एक दिन बीवी ने खीर पका ली, कहा ये कहाँ से आई, कहा रोज थोड़े 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 पैसे जोड़े, मुझे पता है आपको मीठा बड़ा पसंद है, तो मैंने थोड़े थोड़े जोड़ के जमा करके आज बना ली है कि आप खुश हो गए। कहा इसका था कि पैसों में इतनी गुंजाइश है कि कम किए जा सके, उतने पैसे ही कम कर दिए बीवी को देने। हजरत उमर के, अबू बकर के पास जो कुछ था, जब डेथ बेड पे थे, कहा मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इन पे अल्लाह की तरफ, यानी मैंने लिया है हुकूमत से जो मेरी जिम्मेदारियों में था, कहीं मेरे ऊपर हक ना, मैं सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। हजरत उमर रो पड़े कि अबू बकर आप ऐसा मियार सेट करके जा रहे हैं कि बाद वाले तो उस पर पूरे ही नहीं उतर सकते। ये वो किरदार थे जिनको अल्लाह कहता है कि जो लोगों को अल्लाह के रास्ते में देते थे। तो बात अज़्ज़का, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह से प्यार हो और बंदा अपनी चीजें, अपनी जान, माल, जेवर, पैसे, कपड़े, घर को बचा के रखे, ये कभी नहीं हो सकता। नबी अहदीहिम, और वो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को। कौन सा अहद? अलस्तु बिरब्बिकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है इसको उर्दू में? मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह एक है। तो गवाही देना क्या है? वादा किया ना कि आज के बाद अल्लाह को एक मानूंगा, अल्लाह को भी मानूंगा और अल्लाह की भी मानूंगा। लिख लें, बास लोग रब को मानते हैं, रब की नहीं मानते। जैसे बास मुंह से कहते हैं हाँ ये मेरी माँ है, लेकिन माँ की बात नहीं मानते बच्चे। तो अहद यहाँ क्या है? अल्लाह को एक मानने का अहद। और फिर अहद बहुत सारे हैं, यहाँ देखिए वाहिद अहद, इसलिए अलस्तु रब्बिकुम पे बात की, अदरवाइज सारे ही अहद। इस्लाम अहदो पैमान को निभाना सिखाता है, माशरती जिंदगी के अहद है, ये शादी क्या, ये एक अहद ही है ना, घिरा लगती है ना उकदतुन निकाह, शौहर और बीवी या बीवी के बाप और शौहर के बीच में घिरा लगती है। वली जो है वो निकाह करता है अपनी बेटी का किसी के मर्द बेटे से या मर्द से, तो नतीजा क्या निकलता है कि मुसलमान को क्या सिखाए कि वादों को पूरा करो, कमिटमेंट निभाओ। और आप देख लीजिए आज हम मुसलमानों का हाल क्या है। अल्लाह से तो है जो थोड़ा सा थोड़ा, बंदों के कहाँ रहे, मंगनी होती है फिर देखा उससे 4 पैसे ज्यादा वाला मिल गया, पहली तोड़ दी। मदरसती जॉब पे गए, कल कल सुन रहे थे आप दरसो तदरीस के आदाब में कहानियां कि क्या हालात है हमारे दीन की कमिटमेंट पे। हम कहते हैं हम दीन का काम करेंगे, दिल चाहा किया, कोई मुश्किल पड़ी हम सबसे पहले दीन को पीछे डालते हैं, कहते हैं ये कहते, खाना नहीं रुकता, पीना नहीं रुकता, बाजार नहीं रुकते, बाथरूम में जाना नहीं रुकता, हमारा नींद फन तमाशा नहीं रुकता, रुकता है तो हमारा दीन रुकता है हमारी मसरूफियात में, या नमाजों पे बोझ पड़ते हैं, बोझल नमाजें पढ़ते हैं। तो वादे की पाबंदी इस्लाम में बहुत है। इंशाल्लाह आगे बहुत डिस्क्रिप्शन आएगी। छठे पारे सूरह मायदा की पहली आयत ही वादों पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, तो वहां तफसील से बात होगी। नेक्स्ट थिंग देखिए, वस्साबिरीन फिल बासाई, और तकलीफों में सब्र करने वाले, वद्दर्रा और जरर, तीन लफ्ज है यहाँ, आप साथ साथ देख लें, बासा दर्रा और हीन अलबास, ये तीनों करीबुल मानी लफ्ज है, लेकिन जब साथ आते हैं ना तो बास से मुराद है तंग दस्ती, फकर, गुर्बत, पैसे की कमी आती है, तकलीफात आती हैं, जिस्मानी तकलीफें आ जाती हैं, कभी हैंडीकैप हो जाता है बंदा, फिर आप देखिए दर्र पहुंचता है, बीमारियां आ जाती हैं, दिमाग में कुछ खराबियां आ सकती हैं, और हीन अलबास लड़ाई का वक्त, ये कौन सा वक्त होता है, जब इस्लाम को गालिब करना हो और उसके रास्ते की जद्दोजहद, जब जंग के मौके पे लोग जमे रहते हैं, और ये कह लीजिए कि आखिरी काम जो है ना, ये वाला जो काम है ना, ये गलबा इस्लाम की आखिरी सीढ़ी है। आप इनफरादी तौर पे नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, खाने खिला लें, ज़कात दे लें, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ये वक्त नहीं आया ना अभी तक हीन अलबास, तो भी आपका इस्लाम पूरा नहीं हुआ। ये वो वक्त है कि जब कलमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए जंगें करनी पड़ती हैं, उहद, बदर, तबूक, हुनैन, कुरैसा, बनु नजीर, कितने गजबे लड़े, ये वो सारे हीन अलबास थे कि अल्लाह के दीन को दुनिया तक पहुंचाने में, इस निजाम को दुनिया में मुतारफ कराने में, लोगों को दीन की दावत देने में जो तकलीफें आए, फिर उस पर सब्र करो। इसी को कहा वतवासो बिल हक की वतवासो बिस सब्र। कितने काम हुए हैं टोटल? 10 काम हुए, और इन सब कामों की अभी ये सिर्फ प्लेन बात है, अभी इनके आगे फिर डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कम अज कम ये 10 काम कर लो तो उलाइकल्लज़ीन सदकू, यही लोग हैं जिन्होंने सच बोला। किस बोल की तरफ इशारा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने बता दिया कि जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या मुश्किल है। आप देखें ये इतना मीठा कलमा है, मैं अभी आप मेरे मुंह की तरफ देखिए, अब मैं बोल रही हूं तो आप मुझे देख रहे हैं ना, और अगर आप देखो ना, लेकिन मैं अंदर से जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती हूँ, आप करके देखिए। ये वो कलम है जिसमें होंठ भी नहीं हिलाने पड़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई मखरज होंठ से नहीं है, इतना बंदे और रब के बीच का राज है। मोहम्मद कहेंगे तो होंठ छूट खिलेंगे, आप करके देखिए, अंदर जुबान हिलती है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये बंदे और रब के बीच में एक राज है। जब जुबान से बोला तो अब ये सारे काम करोगे तो सच होगा, वो उलाइक हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं तकवा रखने वाले, ये बचेंगे। जुबान से खुशी खुशी से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह और 1 लाख तस्बीह पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते धूम मच जाए और एक तरफ से उनके उनको क्या कहना चाहिए कि हाल पड़ जाए, वो लोग नहीं बचेंगे। तो यहां से आपने इस्लाम का एक बुनियादी मिजाज देखा कि इस्लाम कुछ करने का नाम है और कुछ चीजों से रुकने का नाम है। बात वाजे, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आप देखिए कि इस दीन को दीने फितरत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बंदों के भी और रब के भी हक दिए जा रहे हैं। इससे पहले के जो मजाहब थे बहुत तब्दील हुई, थोड़ा सा मैं आपको ये देखिएगा, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, इसी की बेस पे इस आयत पे बहुत दफा दर्ज, जितनी बात अब मैंने कही है ना, अब आप इसको जरा एक प्रेजेंटेशन की रोशनी में देखिए कि इस्लाम का नुक्ता है आगाज क्या होता है। ये देखिए, कोई भी पौधा अगर आपने जमीन में उगाना हो तो क्या चाहिए होता है सबसे पहले? बीज। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? मट्टी। मट्टी, बीज और मट्टी, फिर और क्या चाहिए होता है? पानी। बीज क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बलिल्लाह। आप पूछें कि आप मुसलमान कैसे हुए? अब हमें तो, हम तो हुए ही नहीं ना, बचपन से सोचते हैं बड़े खुश हैं मुसलमान हैं, लेकिन कोई किसी से पूछे कि कौन सी चीज आपको इस्लाम की तरफ लेके आई, तो आप कहेंगे मुझे रब से प्यार है। ये कहते हैं ना अभी, अल्लाह की मोहब्बत। सबसे पहले एक बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलता है। ये मट्टी जो है ना, इसको लिख लीजिए बंदा मोमिन का दिल। ये जमीन दिल है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत है। पूरा कुरान आपके इस दिल को डिस्कवर करता है और हिलाता है। पानी चाहिए होता है, पानी कहाँ से मिलता है? ये देखिए, बीज डाल दिया मट्टी में, चला गया दिल में, और मट्टी को नरम भी करना पड़ता है ना, इसलिए नरम दिल लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। सख्त दिल, तासुब वाले, खुद पसंद और अपनी ही जात पे खुश लोगों को अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती। अब आ गई, अब बीज दबा दिया मट्टी में, फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बीज अंदर, बी पानी क्या है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वही इलाही। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार दफा इस वही को बारिश का, महफिल में बैठते हैं तो आपको लगता है आपके दिल पे पानी पड़ा है, ओस पड़ती है, पानी है। ये अल्लाह का कलाम, इल्म और हिदायत मिलता है, फिर ये बीज आएगा। हम सोचते हैं कोई शख्स उस दिन मुसलमान हो गया जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, वो हुआ, लेकिन उसका ये बीज खुश्क हो जाएगा अगर ऊपर से या इल्म का पानी ना मिला। जिस दिन कोई दिल में मुसलमान होता है, लोगों को नहीं पता होता, हालांकि बंदा पहले से दिल में अल्लाह से प्यार कर रहा होता है, तभी जुबान से आके बोलता है। कुछ लोग किसी को शहादा पढ़ा के छोड़ देते हैं और कहते हैं बस हो गया मुसलमान, गले मिलेंगे, मुबारक, मिठाइयां दी, खाया पिया लिया, अब सब मस्जिद खाली होगी, वो बेचारा अकेला खड़ा देख रहा मैं करूं क्या। ईमान तो है लेकिन ना उसको रास्ता दिख रहा है। और ये जो पानी पड़ रहा है ना, इसने ही तो दिल में से अमल का पौधा लाना है। तो क्या पता चला कि ईमान कबूल करने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, सबसे कीमती चीज इस किताब की तालीम है। इसको पढ़ना, समझना, गौर करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, फिर ही पौधा निकलेगा ना। अब देखिए अगली स्लाइड में क्या होता है। ये देखिए बीज था ना, अब ये पीछे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ एक बीज था, बीज के ऊपर पानी पड़ गया वही का। ये देखिए इसमें से फिर जड़ें निकलती हैं। कभी आप नए उगे हुए बीज को देखें तो उसके नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है? ये रूट्स आ गई। रूट्स किस चीज की होती है? सबसे पहले दिल में जो जड़ पकड़ती है ना, वो अकीदा पकड़ता है। अकीदा कहते हैं क्रीड को। मुस्लिम क्रीड क्या है? किन ताल्लुक बिल्ला। अभी हमने आयत में क्या सुना? मन आमना बिल्ला। सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ये जड़ें बड़ी होती जाती हैं, फिर इसी से ताल्लुक बिर रसूल व नबी जीन, अभी सुन लिया आपने, फिर वल यौमिल आखिर, आखरत। ये तीन चीजें जहन में रख लें, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह कौन है, कैसा है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, अब मुझे इसके बारे में जानना है। दूसरी चीज मुझे जाननी है कि रसूल क्या थे, कौन थे, उनकी जिंदगी क्या थी, उनकी सीरत पढ़नी है, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़नी है, उनके ऊपर गौर करना है, उनकी आदत को देखना है, और तीसरी चीज के मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। नबी मक्की दौर में कितने साल रहे? 13 साल। आपके इर्द गिर्द कौन लोग थे बताइए? मुशरिक थे, काफिर थे, बुतों के पुजारी भी थे। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक लोगों को सिर्फ ये तीन टॉपिक पढ़ाए, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह कौन है जिसको आप तौहीद कौन है, ताल्लुक बे रसूल, रिसाला और आखरत, मरना, जन्नत, जहन्नम। हमारा ये जो कुरान है पूरा, ये इसका 2/3 हिस्सा, अगर आप पूरे कुरान पाक को तीन हिस्सों में बांटे ना, तो 2/3 हिस्सा सिर्फ इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करता है। हैरत की बात है कि लोग फिर भी कुरान पढ़ के भटक जाते हैं, जो फिर भी गलत काम करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि शुरू नहीं है। बहरहाल ये देखिएगा बाप, पौधे को बाहर निकलने के बाद मुनासिब माहौल की जरूरत होती है। ईमान नेकियों के माहौल में फलता फूलता है। जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है और रसूलुल्लाह का मुकाम समझ आ जाता है, इसकी जिंदगी संवर जाती है। अब आप अपने ऊपर लेना कि आप बिल्कुल न्यू मुस्लिम है। अल्लाह की मोहब्बत थी, दिन ब दिन अल्लाह से प्यार बढ़ रहा है, रसूल से प्यार है, आखरत है। अब आपको फिक्र लग गई मेरे मरने के बाद क्या होगा, मैं कब के बीच किसी वक्त मरना जाऊं। तो अब आप बाहर जाते हैं ना, देखिए यहां से देखिए, ये पौधा इस जमीन को फाड़ कर ये देखिए, पतली सी कोंपल है, बाहर कैसे आया? आप कोशिश भी करें तो मट्टी के अंदर से कुछ निकालना, मट्टी सख्त होती है ना, खुद सख्त मशीन में मट्टी में बाद पौधे निकले, आप उस मट्टी को हिलाने के लिए बाद खुदाल यूज करते हैं, कुल्हाड़े से करते हैं, गोटी करते हैं, फिर मट्टी हिलती है। लेकिन ये पौधा इतनी मट्टी के अंदर से बाहर कैसे आ गया? ये अकीदे की पुख्तगी है। ये है वो चीज जो अहद को, अब हजरत बिलाल को समझ आ गई थी ना, अहद अहद। जितना अल्लाह से प्यार ज्यादा होगा, आप मुखालिफ माहौल में भी अपना इजहार चाहेंगे। ये जो आज हमने एक धोखा दिया ना खुद को कि फलां दिल से बड़ा नेक है, बाहर से नेक नहीं है, वो गलत है। जिस तरह ये पौधा छोटा सा छोटी सी कौम पर इजहार चाहती है ना, इस तरह ईमान भी इजहार चाहता है। ये नहीं हो सकता कि ईमान सो जाए, ये सोया व मुर्दा ईमान झूठा है जो हमारा है आज। इल्ला माशाल्लाह, बड़े नेक हैं बस नमाज नहीं पढ़ते, बड़े नेक हैं बस अल्लाह की बात नहीं मानते, बहुत अच्छे हैं बस कभी कभी शराब पीते हैं। ये नहीं हो सकता। आपको पता चल जाए कि आपके महबूब को क्या पसंद है, तो क्या फिर आप वो काम नहीं करेंगे? तो लिहाजा, और अगर ऊपर हालात अच्छे हों, आप नया नया इस्लाम लेके आए, अब अगर आपके इर्द गिर्द हालात अच्छे हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। मुश्किल कब पड़ती है? जब आंधियां चलती है मुखालफतों की। आप पढ़ के मक्की दौर में उन सहाबा के किस्से जरूर पढ़ें कि जब इस्लाम को कबूल किया तो उनके साथ हुआ क्या। किसी की मां रूठ गई तो किसी का शौहर उसको छोड़ गया, तो किसी के बच्चे चले गए। तो आप समझे, ये कच्ची सी कोम्पल बाहर तो कुछ की तो गिर जाती है, लेकिन अंदर ईमान पुख्ता है। तो कहते हैं ना कि तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाब, ये तो ऊंचा चलती, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितनी मुखालफतें ज्यादा आएंगी ईमान लाने के बाद, उतना ईमान पक्का होगा। बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, अब क्या हुआ? दिल में जड़ें बढ़ती गई। ये देखिए, ये नीचे नजर नहीं आ रही है आपको, हल्की हल्की है। पहले कितनी, क्या था पहली स्टेज, क्या थी बीज, दूसरी क्या हुई, थोड़ी जड़ें बढ़ी, और अब देखिए जड़ें बढ़ती गई। ईमान के बढ़ने के साथ साथ इंसान के दिल में अल्लाह ताला, उसके रसूल की मोहब्बत और आखरत पर यकीन और भी मजबूत हो जाता है। कहते हैं कि दरख्त का साया जहां तक जाता है ना, ऊपर से शेडो, उधर तक उसकी जड़ें होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं। और मैं खुद ये मिसाल कई दफा दे चुकी हूँ कि अमेरिका में हमारे जो इन लॉज का घर है ना, तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी, कैसे कुछ क्रैक्स आ रहे हैं क्या। तो जब वो बुलवा के चेक कराए तो हमारे घर के वहां बाहर दरख्त है, बिल्कुल बाहर जैसे पैसेज में कह लें, बताया कि इस दरख्त की जड़ें अब इतनी बढ़ गई हैं कि इस घर की बुनियादों में आ रही हैं, तो वो रास्ता मांग रही हैं, तो वो आपके घर की बुनियादों को हिला रही हैं, इस दरख्त को काटें। एक दरख्त जिंदा होता है ना, तो उसकी जड़ें बढ़ती हैं। इसी तरह एक बंदा है मोमिन जिंदा होगा ना, तो दिन ब दिन अल्लाह से प्यार बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता जमूत तारी है, पिछले 10 साल से वही इल्म है वही अमल है, 10 साल से कुरान से ताल्लुक है, ना अमल बदल रहा है, ना दिल की हालत बदल रही है, ना कोई असर बढ़ रहा है। ये नहीं हो सकता। मान ले के फिर ग्रोथ रुकी हुई है, आज हमारी ग्रोथ रुकी हुई है कि नहीं? पिछले 10 साल पहले किसी अपने खानदान के एक बंदे का तसव्वुर में लाए, आज भी वैसा ही है। कोई नेक है तो शुरू से नेक है, नमाजी है तो शुरू से नमाजी है, जो नमाजें पढ़ रहा है पढ़ रहा है, जो पढ़ता नहीं करता था आज भी नहीं कर रहा, जो तब नाइस था आज भी नाइस है, जो कल बड़ा होशियार चालाक था आज भी बड़ा होशियार चालाक है। ग्रोथ क्यों रुकी हुई है? क्योंकि दरख्त मुर्दा हो चुके हैं हमारे। ये कुरान क्या करता है? हमारे मुर्दा दरख्तों को जिंदा करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ वो हलाक हो गया। जाहिर बात है, आज ये हॉल नया है, खूबसूरत है, नया बन गया, अगर हर वक्त इसको रोज मेंटेन नहीं करेंगे तो 1-1.5 साल 2 में ये पुराना लगेगा। ये ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान तुम्हारे दिल जिस्मों में पुराना होने लगता है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, इसको इल्म के साथ नया करो, इसको वॉश करते रहो। इसलिए कहा कि मुसलमान को अपनी इस किताब को पढ़ना, समझना और इससे जुड़ना कितना लाजमी है। अब आप देखिए यहाँ दिल में क्या छुपा हुआ था, तीन चीजें बोले आप सब बोल मिलके, ताल्लुक बिल्ला और ताल्लुक बिर रसूल आखरत, यानी अल्लाह रसूल और आखरत। यहां से ऊपर ये तना निकला। आज आप इस्लाम का वो दरख्त समझ रहे हैं जो असल तरतीब थी। आप यहां से देखिए ये इबादत, ये स्टेम के वर्शिप, जितना अल्लाह की मोहब्बत की जड़ें पुख्ता होंगी ना तो बंदे का इबादत में दिल ज्यादा लगेगा। ये देखिए नमाज, रोजा, हज, जकात, दुआ, जिहाद, ये चीजें ताल्लुक बिल्ला से पैदा होती हैं। अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह के आगे झुकना, झुकने को दिल चाहता है तो नमाज पढ़ता है बंदा। नमाज में अल्लाह से इतना प्यार हो जाता है कि अल्लाह के बंदे अच्छे लगते हैं तो ज़कात देना चाहता है, शेयरिंग करता है। जब ज़कात दे देता है अल्लाह के रास्ते में, माल खर्च करता है, तो कभी कभी कहता है कि नहीं सिर्फ पैसा क्यों दूं, मैं अपनी भूख भी दूं, तो रोजा रख लेता है। रोजे में क्या है, फिर सारे नफ्स का जिहाद है। हाँ? कि जब ये करता है तो कहता है नहीं मैंने हज भी करना है, हज में बड़ी मुश्किल, जाके देखो अल्लाह का घर है कैसा, वहां लोग क्यों जमा होते हैं। कल भी मेरे साइड टेबल पे एक तस्वीर पड़ी थी जिसमें बैतुल्लाह की बहुत क्लोजअप थी ना, तो मैं जब गई तो मैंने खोल के पकड़ा तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हजरत इब्राहिम ने कभी सोचा भी था कि इधर इतने लोग आएंगे उस दिन, तो क्या तगीर अजीज और बंजर वीरान जगह पे इब्राहिम ने एक बीज डाला था, बस अपना घर गिराया, अपने बुढ़ापे का सुकून खत्म किया, घर से बेघर हुए आज के दौर के में कह लें आप, लेकिन अल्लाह का घर आबाद हो गया। इखलास के साथ किए हुए काम इस तरह पनपते हैं और अल्लाह ने वो करके दिखा दिया। इसी तरह आप देखिए कि फिर जिहाद का मौका आता है तो जिहाद बेखतर कूद पड़े, अल्लाह का दीन सर बुलंद किया, तो गोया के ये स्टैम्प है। इसके बाद ये देखिए ऊपर ब्रांचेस, दरख्त की शाखें होती है ना, ये जितनी भी ब्रांचेस शाखें हैं ना, ये बंदे के हकूक लिबाद होते हैं। मुआमलात चार चीजों से दीन मिलके बनता है। आपको मैंने आयते आयतुल आयत में सुनाया था ना कि सूरह बकरा में चार चीजों की लड़ी चलती है, आज का सबक उसकी दलील है। इसके फौरन बाद अब आप वसीयत के और कसास के अहकामात पढ़ेंगे, ताल्लुक बिल्ला, ताल्लुक बिर रसूल और मुआमलात। ये जो मुआमलात है ना, सदका खिरात है, हकूक इबाद में माँ बाप के साथ कैसे रो, बीवी शोहर के हकूक कैसे अदा करे, शोहर बीवी के कैसे करे, हमसायों के हकूक, मजदूरों के हकूक, गुलामों के, कनीजों के, सारा दिन तो हम इन्हें हकूक की चक्की में पिसते हैं ना, फिर इसको मिलते हैं। ये जो पत्ते हैं ना, ये अखलाक है। पत्ते आमतौर पर दरख्तों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। दरख्तों में से अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो दरख्तों में क्लोरोफिल होता है, सब्ज मादा। दिन के वक्त दरख्तों में से, पत्तों में से ऑक्सीजन निकलती है और जितनी फिजा की कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपके लिए टॉक्सिक है, जहरीली गैस है जो हम छोड़ते हैं, ये दरख्त सारे खुद ले लेते हैं। इसलिए दरख्तों के पास जाए तो सुकून मिलता है। रात को अल्लाह कहता है तुम भी सो जाओ, मकुम सुबाता, इसी तरह रात को दरख्तों का निजाम ऑपोजिट हो जाता है। रात को दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। कौन करता है ये, किस माँ ने ये सबक सिखाए पढ़ाए दरख्तों को, ये अल्लाह की जात ने सिखाया है। तो एक बंदा मोमिन एक सरसब्ज दरख्त होता है। पीछे से आप ताल्लुक बिल्ला की जड़ें काटें, देखिए जड़ें काट दें इस दरख्त की, ठहर के गिरेगा। नमाज में दिल क्यों नहीं लगता हमारा और हमारे बच्चों का, ये ताल्लुक बिल्ला नहीं है। आपके शौहर क्यों नहीं हज करते, हज रोजा क्यों नहीं रखते, ताल्लुक बिल्ला टूटा हुआ है। आपको पर्दा क्यों मुश्किल लगता है, गीबत छोड़नी क्यों मुश्किल लगती है, ताल्लुक बिल्ला टूटा हुआ है। असल काम जो करने का है ना, वो लोगों के दिल में अपने करीब और दूर वालों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दें और उसको चैनलाइज कर दें। आखिरत मरना, इबादतें खुद ही बखोगी, इबादत का असर फिर मामलों में दिखेगा। अब आप जरा मेरे माउस की तरफ इशारे से देखिए, अगर कोई शख्स क्या करें कि इसके पत्ते उतार दे और आपसे पूछे, आज इस वक्त आप देखे तो आपको क्या लग रहा है, दरख्त, ये जो फल लटके हुए ना, ये फ्रूट्स ऑफ ईमान है। एक टॉपिक है वेबसाइट पे, आप सुनिएगा, 21 गालिबन फ्रूट्स ऑफ ईमान डिस्कस किए हुए हैं कि ईमान के क्या समर आते हैं, खुशी, सुकून, इत्मीनान, जन्नत, खुशखबरियां, बहुत कुछ मिलता है ईमान के बाद, और आखिर में जन्नत सबसे बड़ी अल्लाह का दीदार। हाँ, तो ये पत्ते उतार दे, फिर भी ये दरख्त तो लगेगा ही ना। कोई आ जाए ये फ्रूट भी काट के, पत्ते भी काट दे, कोई ऊपर से आ जाए ये डंडलियां काट दे, डंडियां काट दे, क्या लगेगा? फिर भी दरख्त लगेगा ना। कोई एक शख्स आए ये पूरे का पूरा ऊपर से इतना हिस्सा काट दे, देखिए जड़ें तो छुपी हुई है ना, वो तो नहीं दिख रही, ये सिर्फ एक सीधी डंडी कड़ी हो जाए, कोई पूछे इस आपसे ये क्या है, कोई इसको दरख्त नहीं कहेगा, उसको तो नहीं कहेगा, एक डंडा खड़ा है। तस्वुर में लाइए ना, एक स्टैम्प है, स्टैम्प काट दे, और अगर आप देखिए कि कोई ये कह दे कि ये स्टैम्प काट दिया और सिर्फ नीचे जड़े रह जाए, कोई इसको दरख्त कहेंगे? नहीं। मुकम्मल इस्लाम क्या है कि आप अल्लाह से लेके बंदों के सारे मामलात में बैलेंस रखें। अब आप देखिए आज इंसानों में किस किस्म के लोग हैं। अब आपकी शायद में जो नेकी के असल रूप बताई है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। दरख्त पूरे का पूरा दरख्त है, लेकिन आज हमें मुसलमानों में भी, नॉन मुस्लिम की तो बात ही नहीं हम कर सकते, असल तो बात मुसलमान की है, चार किस्म के लोग दिखते हैं। कौन से? नोट करें, इसको हटा देती हूँ ताकि आपकी स्क्रीन तवज्जो ना बटे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम किसी सोसाइटी के क्रिमिनल्स कहते हैं, चोर उचक्के डाकू, हम कहते हैं ये बड़े खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, पिक पॉकेट, जेब कुतरे कह लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, क्रिमिनल्स आप कहते हैं ये बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप करीब से देखें ना, इनमें भी कुछ खैर है। मसलन इनकी नेकियों का अपने पास क्या एक क्राइटेरियन है? ये कहते हैं हम चोर हैं लेकिन अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करते। कहते हैं ना चोर भी जाता है तो चार घर छोड़ के नेकी चोरी करता है, ठीक है। हद तक कि तवाइफे, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतें, क्या ख्याल है आपके, आपका ख्याल है अपने जोम में वो नेकी नहीं करती? करती हैं, वो जाके पानी की सबीले लगवा देती हैं, मुहर्रम में कहीं जाके चंदा दे दिया, कहीं जाके कोई कुआं खुदवा दिया, कुछ ना कुछ नेकी क्रिमिनल्स भी करते हैं, ठीक है। ये सबसे गिरा पड़ा तबका है सोसाइटी का, जिसको हम 3 में ना 13 में करते हैं। अक्सर देखिए सोशल वर्क के नाम पे ऐसे काम लोग करते हैं, यतीमों की बेवाओं की मदद भी करते हैं, तो उनके यहाँ नेकी क्या है कि अपने बुरे काम करते रहो, साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी करते रहो ताकि हम भी नेक बन जाएं। वैसे उसके ऊपर चलिए, एक और तबका होता है सोसाइटी का, एक दूसरा तबका, और वो कौन सा है? जिनको हम शरीफ शुरफा कहते हैं, और कसरत इन लोगों की है दुनिया में। वो क्या करते हैं? नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ लो, फिल्म का वक्त है तो फिल्म देख लो, दुख गम आए तो बैठ के सुपारे पढ़ लो, सुपारा सुपारा पढ़ के बड़ी बड़ो ला इलाहा इल्ला अंता पढ़ लो, कुछ भी। लेकिन शादियों में, कॉन्सर्ट्स में भी बैठ जाओ और डीजे को बुला लो। इनकी जिंदगी स्ट्रीम, दो स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, एक नेकियों की एक गुनाहों की। मस्जिद में आते हैं तो नमाजी, घर में जाते हैं तो पापी, हज पे गए तो हाजी साहब, और शादी में गए तो फिर वो सेठ साहब, और बिजनेस में गए तो सूद है, और देना पड़े तो मस्जिदों में बड़े बड़े कालीन भी डलवा देते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? दीन भी रखो दुनिया भी रखो। हाँ, ये वो लोग हैं। इनके यहाँ नेकी क्या है कि दीन के साथ दुनिया अलग, गुनाहों के साथ रखनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे चलिए, किसी सोसाइटी का एक तीसरा गिरोह होता है जिसको हम मजहबी गिरोह कहते हैं, दीनदार तबका। सारे नहीं, वो लोग जो नेकी की रूह से खाली हैं उनकी बात करूंगी। उनके हाँ नेकी क्या है? रिचुअल्स। उनका हाल क्या है? छोटी छोटी बातों में इख्तलाफात, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे पे कुफर के फतवे, हाथ ऊपर नहीं बांधे नीचे बांधे काफिर, नमाज में रफुलदैन किया कि ना किया, बस ये तरावियां 8 हैं या 20 हैं, झगड़े, मस्जिदें अलग हो गई। यानी जिसके बारे में आप कह ले कि मच्छरों को छानते हैं और ऊंटों को निगलते हैं, यानी दीनदार तबके में वो एक मखसूस तबका, सब दीनदार नहीं है वल्लाही, किसी दीनदार को आप इसमें ना रखिएगा, आप उनकी इज्जत करें, लेकिन दीनदार तबका ऐसा होता है जो सिर्फ रिचुअल्स के साथ दीन पे चलता है। लेकिन नमाजें 5 के साथ बजाय 7 पढ़ेंगे, लेकिन बीवी पे हाथ भी उठेगा, जुबान पे गालियां भी हैं, और इस तरह इखलाक बड़ा खराब है। बात बात पे लोगों को काफिर और जहन्नमी का लानती का फतेह देंगे। आप कह लें कि ये वो गिरोह है कि जिनके अंदर जाहिर बहुत है, दाढ़ी की लंबाई भी नापेंगे, शलवार कितनी टखनों से ऊंची हो कितनी ऊपर इसको भी नापेंगे, लेकिन मामलात और इखलाकियात और लेन देन में कई गड़बड़े होंगी। चौथा एक और गिरोह है जिसको आप कह सकते हैं क्रीम ऑफ दी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग, हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, के जिनके पास दुनियावी इल्म की इंतहा है, इनके पास नेकी क्या है? ये कहते हैं झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, किसी को धोखा नहीं दो, किसी का हक नहीं मारो, इज्जत से बोलो, घर के मुलाजिम को भी आप कह के पुकारते हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं ये लोग, किसी को टाइम दे दे वादा खिलाफी नहीं करते, इंतहाई डिसेंट लोग आप कह लें, इंतहा से ज्यादा डिसेंट, सोशल वर्क के नाम पे रात तो दिन रात को भी काम करेंगे, कहीं पैसे जमा करने हैं, कहीं कुछ भी करना है करेंगे, लेकिन इनका मसला क्या है? इनसे कहें भाई उठो नमाज पढ़ ले, कहते हैं नमाजों से क्या होता है, हम भी तो काम ही कर रहे हैं, अल्लाह ने हमारी नमाजों से क्या करना है? बाज़ औक़ात देखा गया कैसे लोग नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह की मखलूक को बहुत फायदा देना चाह रहे होते हैं। अब आप बताइए क्या ये चारों गिरोह इस्लाम का मुकम्मल दरख्त दिखा रहे हैं? सब पार्शली राइट है लेकिन ओवरऑल सब रॉन्ग है। मैंने इस पे बात की भी है बहुत दफा, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पे भी है और दावा सीरीज में, कि नेकी की हकीकत क्या है, दो सीरीज है, यही सारी बातें उसमें आपको ज्यादा डिटेल से मिल सकती हैं, कि नौ अंधे थे वो हाथी को देखने गए और किसी का पेट पे हाथ पड़ा, किसी का दुम पे पड़ा, किसी का कानों पे पड़ा, फिर आके आपस में बातें कर रहे थे कि हाथी कैसा होता है, किसी ने कहा कि हाथी तो रस्सी की तरह है, किसी ने कहा ढोल की तरह है, किसी ने कहा पंख की तरह है, थाल की तरह है, क्योंकि जिसका जहां हाथ पड़ा उसको हाथी वैसा लगा। तो दे ऑल आर पार्शली राइट लेकिन ओवरऑल गलत है। आज हम मुसलमानों का तकरीबन यही हाल है, जिसको दीन का जो हिस्सा समझ आया, और तबीयत भी होती है, मेलान होता है, किसी को नमाज पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को रोजे का सुन के जान निकल जाती है, किसी को रोजा छोड़ना मुश्किल लगता है, ठीक है, किसी को माल देना बहुत आसान है, हाथ खुला है, वो रोज चेक काटता है, वो अल्लाह के लिए भी एक दो चेक रोज दे दे, 2 दिन बाद दे दे, क्या बड़ी बात है। इस्लाम क्या चाहता है कि हम दीन का एक मुकम्मल नमूना बने, और ये आयत हमें इसी की तफसीर दे रही है कि लैसल बिर्र, बहसों में ना पड़ो, छोटी छोटी बातों में ना पड़ो, नेकी की असल हकीकत समझो। लाले ने, कुछ नरगस ने, कुछ गिल ने, फूलों के नाम है, कि किसी एक फूल की चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। आज हम मुसलमानों का हाल यह है, पूरा इस्लाम जब तक नहीं आता, ये रूह की तरह, जैसे अभी दरख्त की हमने मिसाल देखी ना, कि दरख्त के दरख्त बाहर पड़ा हो, एक आर्टिफिशियल दरख्त तो नीचे बहुत सारे बड़े होंगे, आप आके रिसेप्शन पे देखा करें, जब से हम आ रहे हैं वैसे का वैसा है, ना बड़ा हो रहा है, ना छोटा हो रहा है, ना कभी मुरझा रहा है, ना कुछ, लेकिन ये बाहर के दरख्तों के साथ आजकल क्या हो रहा है, इनके पत्ते क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा दरख्त है, ये आर्टिफिशियल दरख्त है। जब इस्लाम आर्टिफिशियल होता है ना लोगों का, तो ये जाहिर वाला इस्लाम, पंप एंड शो वाला इस्लाम, ग्लैमरी, खुशबुएं और छालियां और पान और नाच टाप, और जो जैसा दिल होता है वक्त के मुताबिक उसको सजा लेते हैं, फिर उठा के अंदर रख देते हैं। मेरा और आपका इस्लाम असली है कि नकली, आप अपने दिल की हालत से देखें, कभी आपके इसके इस्लाम आपके इस्लाम पे कभी बहार आएगी? इतना नेकियां करने को दिल चाहता है कि रात को नींद ही नहीं आती, किस खौफ से कि नमाजी ना चली जाए, हज पे चले जाए, रमजान में देखिए हमारे दिल की हालत वही होती है, रमजान की मस्जिदें और आज की मस्जिदें, कभी सिर्फ इस सोच के साथ वेम्बले सेंट्रल मॉस्क में जाइएगा कि रमजान की रातों में सड़कों पे लोग खड़े होते हैं, मेरी आदत है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला जिंदगी भी दे और इस्तकामत दे, मेरे शौहर 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में ही जाते हैं, और जब आते हैं 2 सवाल पूछती हूँ, कौन सी आयतें पढ़ी इमाम साहब ने जो जहरी नमाज होती है, और दूसरा कितने लोग थे, 1 साहब, 2 साहब, 2.5 साहब, दैट्स इट। मैं तो कहती हूँ सारा साल मस्जिदों को आबाद सिर्फ जुम्मे के जुम्मे होता देखते हैं, ये नमाज नहीं, ये दीन नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज है, आप जिंदा चीज रखेंगे, आप एक दरख्त है ना, फ्रेश प्लांट उसको इधर कहीं छोड़ दें और 10 दिन 15 दिन के लिए क्लासरूम बंद कर दें। जब आप 15 दिन बाद आके रूम खोलेंगे ना, आपको स्मेल आएगी, आके देखेंगे काई लगी हुई है, क्योंकि ये जिंदा दरख्त था, इसको इस हार चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। आर्टिफिशियल जितना मर्जी रख दें, वो 100 साल बाद भी वैसे ही आपको दिखेगा अगर आपने उस पर कुछ खराबी नहीं की। इस्लाम के साथ जिंदगी है, हलचल जबरदस्त, इसीलिए कहा हीन अलबास, लड़ाई के वक्त में, मुश्किलात में, तकलीफों में इस तरह चलो। आज हम मुसलमान इस तरीके से अपने इस्लाम की बातें करते हैं कि जाहिरी रिचुअल पे लड़ते हैं, दीन की रो नहीं पता, बस नमाज के अंदर छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं, लेकिन नमाज सिखाती क्या है नहीं पता। एक लेक्चर अगर आपने रमजान में सुना हो, बल्कि अभी मैं स्कॉटलैंड गई थी तो हमने अलमीजान में इस मौजू पे बात की थी। आज माशाल्लाह हमारे पास दो गेस्ट हैं बाहर से, एक जर्मनी से और एक स्कॉटलैंड से, बाद में आप शेयर करना चाहें, और एक हमारी न्यू बॉर्न बहन है। तो आज की आयतें कितनी ज्यादा आप देखिए कि हमें इस्लाम का एक मुख्य, जब हम सिर्फ रिचुअल पे रहते हैं तो भी बात नहीं, और सिर्फ रिचुअल छोड़ दें और सिर्फ उस पे आ जाएं कि भाई ये नहीं तो वो भी ठीक है। एक आखिरी चीज देख के फिर अगली आयत पे चलती हूँ। ये देखिएगा इस तस्वीर को, अब ये इस्लाम का मुकम्मल दरख्त बन गया, ठीक है। कोई बंदा आए और इसके पत्ते उतार दे, कुछ कर दे, इसको छोड़िए, ये देखिए यहां से आप काट दें इस दरख्त को। अगर आप ऊपर से काटना शुरू कर रहे थे, नहीं, आप इबादत का ये दरख्त नीचे निकाल दें, कोई कुल्हाड़ा लाए और ये स्टेम इसका काट दें, क्या होगा? पूरा दरख्त गिर जाएगा ना। जो लोग नमाज रोजा नहीं करते और सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसका मैंने आखिर में आपको मिसाल दी, उनका हाल क्या है कि उन्होंने इस्लाम के दरख्त का तना गिरा दिया, तो दरख्त कैसे बनेगा? आपका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है तो बंदों की कहां बात मानेंगे आप? ये भी धोखा है। इस पे इंशाल्लाह बात आगे आयत के साथ कर देती हूँ, तो आपको फायदा होगा कि हर अच्छा काम गुड डीड नहीं होता। लिखिए एक लफ्ज है गुड डीड, बिल मुकाबिल यानी उसके वर्सेस राइटियस डीड, समझ ही लें तो अच्छा है, इधर ही फिर ही फायदा होगा। हर अच्छा काम नेकी नहीं होता। मसलन आप देखिए कि यहां इस मिसाल को सामने रखें कि जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं वो कर तो अच्छा रहे हैं काम, लेकिन वो गुड डीड कब बनेगा? जब वो पहले खुद भी तो नमाज रोजा करेंगे। सिंपल सी बात है ना, अल्लाह का हक आप नहीं दे रहे। एक बंदे अल्लाह को मान ही नहीं रहा, नाम सिर्फ ले लेती हूँ, लोगों को गम बहुत है मदर टेरेसा का, मैं नहीं जानती उनको वो कौन थी कितना, बस लोगों से ही सुना है, इसलिए मेरे पर्सनल कोई व्यूज नहीं है इस मिसाल में। लोग कहते हैं ये बताइए कि मदर टेरेसा जन्नत में जाएगी कि नहीं? भाई क्यों? इसलिए कि वो कोढ़ के मरीजों की मदद करती थी, लेप्रसी की पेशेंट जो थे उनकी मदद करती थी, सिर्फ मिसाल के लिए। वल्लाही मैं, और हमें हुक्म भी नहीं कि किसी एक बंदे का नाम लेके जन्नती या जहन्नमी के, हत्ता के मुसलमान के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये मरहूम है और ये जन्नत में चला गया, इसलिए हमें मदर टीसा से कुछ सरोकार नहीं। मिसाल देती हूँ, एक बंदा आप देखिए नीचे, मन आमना बिल्ला आमना बिर रसूल, वो गायब है ना, अगर उस बंदे ने इकरार नहीं किया अल्लाह और रसूल को मानने का, ये पिछली स्लाइड पे चले जाए तो आपको बात ज्यादा समझ आएगी, कि जो बंदा दिल में उसके अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। कुछ लोग नेकी इसलिए कर देते हैं, कहते हैं सुकून मिलता है, सुकून आता है, हर नेकी में सुकून नहीं है। आप जंग में जाते हैं कोई सुकून है? हिजरत करते हैं कोई सुकून है? चोटें लग रही हैं, चोटें पड़ती हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी क्या होती है कि हर वो चीज जिससे सुकून मिले, लोगों का फायदा है, वो गुड डीड है। नहीं, लोगों का फायदा हुआ, बस आप देखिए ना कि जिस बंदे ने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, रसूल से नहीं है, मरने के बाद उस नेकी पे जन्नत जहन्नम मिलनी, वो नहीं है, मिसिंग है, ये सारा हिस्सा मिसिंग है, इबादत उसकी नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर झाड़ है ना। तो आप बताइए कि जिस बंदे ने अपने रब से ताल्लुक नहीं जोड़ा, बंदों को फायदा दे रहा है, क्या उसको कल जन्नत मिलेगी? सिंपल सी बात है। इसलिए अल्लाह कहता है कि जो भी इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेके आएगा वो कबूल ही नहीं है। वजह क्या है कि पहले रब को तो मानो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद बात मुश्किल है, मुझे आपके चेहरों से लग रहा है कि बात मुश्किल है। देखिए कि नबियों का काम क्या होता है, कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि अल्लाह क्या है और ये भी बताया कि अल्लाह क्या नहीं है। एक बंदा अपने तखय्युल में अल्लाह ताला का कोई मुकाम बना ले, सिर्फ मिसाल देने के लिए, कि कोई कहता है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बाहर दरख्त है ये खुदा है, मिसाल है, वो उसके आगे पूरी नमाज पढ़े, सजदा करे दरख्त को, नमाज फिर सूरह फर्ज भी पढ़े, सुन्नत रुकू क्याम सजदा, क्या आपकी, आपका ख्याल है उसकी नमाज उसको फायदा देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसने सही मुकाम नहीं पहचाना, अल्लाह को नहीं माना, राइट? रिश्तों की तमीज होती है, आप जिस औरत को मां समझते हैं उसी की खिदमत करते हैं ना, जिसके बारे में आपको यकीन है आपकी बीवी है, आप उसी का ख्याल रखते हैं ना। तो पहली चीज खालिक को पहचानना, नबियों के तरीकों को सामने रख के नेकी करेंगे ना तो वो राइटियस डीड है, बस अभी इतना ही समझ ले। और ये जो लफ्ज है ना लैसल बिर्रा, इसकी ज्यादा तफसीर इंशाल्लाह चौथे पारे की पहली आयत में आएगी, लन तनालुल बिर्रा। अभी आपने लफ्ज़ी वजाहत में भी देखा ना, सुकून जंगल की मिसाल दी है, नेकी के जो बंदे को सुकून देता है। कभी सफर का हुआ है किसी को? शिप में गए, कश्तियों में तो बैठे ही होंगे, कितना खौफ आता है जब वो जहाज रात को हिलता है। मैंने एक रात गुजारी और नियत की थी आज के बाद नहीं आना, इतना खौफ आता है कि हम अंदर से निकल के बाहर आ गए थे कि मरना तो खुले आसमान के नीचे मरे। खौफ इस चीज का नहीं था जहाज हिलता है, जो अंदर हो रहा था उसका खौफ था। पब्स, शराबें चलती हैं, म्यूजिक, लोगों ने उसको अपने लिए एक फन का जरिया बनाया, और हमारी जान पे बन रही थी कि अल्लाह बनेगा कि इतनी मंजिलें सारी हमारे ऊपर ही गिरनी है अगर अल्लाह को गुस्सा आ गया। नाफरमानियां करते हैं हम अल्लाह की जगह पे जाके, नीचे जमीन नहीं ऊपर आसमान नहीं जाना है तो किधर जाना है। लेकिन आप महसूस करें कि पानी में बंदा हिलता है ना, उसका दिल डोलता है। हाँ? जब मैंने उस शिप के बाद साहिले समंदर पे पाँव रखा, आज भी बता सकती हूँ उस वक्त मुझे इस जमीन की कदर आई कि ये जमीन क्या है। समझ आ रही है? बर लैसल बिर या बर, अगर आप उसको इमेजिन करें कि इंसान बेसकूना होता है, इत्मीनान नहीं होता उसकी जिंदगी में, जब वो इस्लाम के अंदर आता है तो उसको वो सुकून मिलता है जो तरी से खुशकी पे आता है। सिस्टर आप आइए, इधर आपको शेयरिंग करना चाह रहे थे,
करना
आ जाइए चंद मिनट के लिए। इस्लाम जो है ना बंदे को सुकून देता है, चाहे जिस्म पे चोटें लगी हो, तकलीफें हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल बड़ा पुरसकून होता है। सो मुझे इनका मैसेज मिला है, माशाल्लाह आज इनका तीसरा दिन है, तो प्लीज जो आप चाहें, मुझे पता नहीं आप क्या कहेंगी, लेकिन जो भी आपने चंद मिनट लेने हैं प्लीज।
मैं जो कहूंगी इस्लाम के अंदर तो ही कहूंगी, क्योंकि जो ये 3-4 दिनों में मैं महसूस कर रही हूँ, तो वो मैं आपके नाल जो शेयर करना चाहती कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती कि मैंने क्लास में जाना है, मैंने अल्लाह के बारे जानना है, मैं अल्लाह को मिलना है, मैं अल्लाह को देखना है। ऐसे बेचार, पता नहीं मेरा, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मुझे पता नहीं मेरा काम कौन कर रहा है। मैं दुकान में भी नहीं गई जबकि मैं मिली हूँ। इतना अच्छा आपको गाइड कर रहा है, इतनी आसानी से अल्लाह के बारे में बता रहा है, तो एक एक चीज जो दिल को लगती है, मैं कहूं कि मैं सलूट हुआ कि हमें अल्लाह के नजदीक एक कैसे लेके आ रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर समय जितना भी टाइम मिले इस क्लास को हम जरूर अटेंड करें, क्योंकि इनकी बातों में मुझे कोई लिखने में कुछ नहीं, मुझे तो मैं इसके मुंह वाल देखती रहूं, जो ये कह रही है वो कुरान मेरे अंदर दिल में लिखी जा रही है एक एक लफ्ज। तो वो मैं वहां बैठे थे, इन्होंने बोला अभी क्वाइट है, टेस्ट हो रहा है, तो पता नहीं मैं कितने पन्ने लिख ले उसी समय बैठी बैठी ने, कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर से, क्या हो रहा है मैं आपको बताना। इन्होंने वो एक ही बात में कही कि हमें कुरान पर अमान लेकर आना चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं उनमें अमल नहीं कर रहे। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। एक बार एक शिकारी था, उसके हाथ में तोता था। जब वो शिकार करने के लिए गुजरा तो उसने एक किसी नबी को, किसी पीर को देखा, तो उसने सोचा भी बड़ा है कोई बंदा, चलो इसको मैं मत्था टेक दूं, प्रणाम कर दूं। समझते मैं जो कह रही हूं?
समझते
तो मैं मत्था टेक लूं। तो उसने सोचा मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है, तो क्या करूं। उन्हें जो तोता था जो पिंजरे में था उसके आगे रख दिया। जब नबी तो पूरा अपने अल्लाह के में मगन था, जब उसने आंखें खोली तो देखा ये तोता कौन छोड़ गया जो पिंजरे में है। तो उन्होंने सोचा ये भी तो जानवर है, क्यों ना मैं इस पिंजरे से इसको आजाद कर दूं। फिर नबी ने सोचा आजाद तो तब करूं अगर इसको कोई इल्म आ जाए, ये दोबारा ना पिंजरे में फंस जाए। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको तोते को बोलता कि मैं तुझे एक इल्म देता हूं, उसको अमल करना, तू फिर दोबारा जाल में नहीं फंसेगा। उन्होंने क्या दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, और तोता सीख गया। जब नबी को पता लगा ये तो सीख गया, अभी नहीं फंसेगा, जा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, उसका मतलब कि इसको इसने अमल कर लिया। तो पीर ने उसको छोड़ दिया, पिंजरे से निकाल दिया। तो तोता अपने जंगलों में जाके बोलता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जितने भी आई बहन भाई तोते और सब ये सीख गए। शिकारी दूसरे तीसरे दिन गया, जब शिकार करने लगा तो उसको तो नबी पर बड़ा गुस्सा आया। कहते यार ये क्या बात हुई मेरे साथ, मैंने तो उसके लिए फायदा सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये नबी ने तो मेरी रोजी रोटी में लात मारी। ये तो सारे तोते बोल रहे, तो अभी मेरा तो काम ही शिकार करना है, तो मैं अभी मेरा तो काम खत्म हो गया। तो वो क्या करता है शिकारी, तो वो नबी के पास ही जाता है, कहते आपने गलत किया, आपने सही नहीं किया। वो कहते मैंने क्या किया, कहते वो तो सारे तोते यही बोल रहे हैं। नबी बोलते तो जाके ये देख के रहा है कि वो अमल कितना करते हैं। उन्होंने फिर जाल बिछाया, दाने डाले, सारे तोते दाने देख के फंस भी गए जाल में, फिर भी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछा लेगा, फंसना मत। उसे पहले उसे शिकारी ने जाल खींचा, सारे तोते फंसे हुए भी बोल रहे हैं। आज हम सब फंसे हुए हैं, अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। सिख कहता कि मेरा नानक बड़ा है, हिंदू कहता मेरा राम बड़ा है, कोई कहता मेरा कृष्ण बड़ा है, और एक अल्लाह को उसके नूर को देखा तो है ही नहीं, जाना तो है नहीं कि अल्लाह कितना बड़ा है। कि वो एक लाइट है, एक प्रकाश है, उसको उस नूर को हम कैसे उसका दीदार कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक एक खजूर है, ठीक है, आज मैं बहन जी की नकल कर दी, एक खजूर है, ठीक है, ठीक है, अगर इसको चाहना है तो लड़ाई है, ठीक है, क्योंकि किसी को होगा इसको कम मिलेगी, किसी को होगा इसमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अल्लाह तो किसी को बांटने की लोड़ नहीं, इसका भी एक ही अल्लाह है, मेरा भी एक ही अल्लाह है, आपका भी एक अल्लाह जी, वो अल्लाह एक है, वो एक नूर है, वो हम सबको देने वाला है। फिर लड़ाई कहाँ है, लड़ाई एक चीज में है, हमें नबियों की बात अमल में नहीं लेकर आए, पढ़ने तक ही सीमित रखी है, जिस दिन अमल में लेके आए वो ही बात आई। अमला बाजो आलमा, इल्म निकम्मे सारे, इल्म कहते नहीं वो अल्फाज की पहचान को, इल्म तो बता दे जो जिंदगी की शान को। इल्म जब आता है उसको कहना नहीं पड़ता कि तू कुरान को कितना मानती, तू अल्लाह से मोहब्बत है, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है जो अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है।
लेकिन उससे
क्यों,
मोहब्बत वैसे ही करनी है जैसी
हाँ
अल्लाह ने सिखाई है।
बिल्कुल, ये जहां मैं आके ये महसूस करिए, जो बहन जी एक एक लफ्ज कह रहे हैं, वो एक एक चीज मेरे दिल में है। शायद तो मैं एक्साइट बहुत हूँ, या मैं नई हूँ, या मेरे लिए सब कुछ ही, जहां पर मैं आप लोगों को भी सलूट करती हूँ कि आप इतना कीमती सामान लेकर आए, तो इसको जरूर अमल में लेके आए कि हमारे अल्लाह दाता ने, हमारे रब ने हमें इतना अच्छा धर्म ग्रंथ दिया हुआ है, हम लोगों में इस्लाम लेकर आए, उनको बताएं कि अल्लाह को पाके अल्लाह से मोहब्बत हो गई, क्या है और नेकी क्या है।
इंशाल्लाह, जजाक अल्लाह खैर वसन जजा,
और थैंक यू,
शुक्रिया।
मैं होते बैठ
जी, जजाक अल्लाह, बिल्कुल, उधर बैठ के ज्यादा समझ आएगा ना। तो बहरहाल आप देखें कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके इजहार का तरीका भी आ जाता है ना। बाज दफा हमें मोहब्बत बहुत होती है अल्लाह ताला से, उसके इजहार का तरीका नहीं आता। तो हमारी ये बहन बिल्कुल नई है ना, तो इन्होंने अल्लाह से भी मोहब्बत की है, तो इस दीन में इन्होंने क्या सीखना है अब, कि इस मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, यही सीखने का नाम कुरान की तालीम है और हदीस है। क्योंकि देखिए कि जितने भी फिरके भटके ना, याद रखें एक बात, जितने फिरके इस्लाम से हटे, ये पहले जुमला याद रखे, क्या जितने मुख्तलिफ दुनिया में मजहब और फिरके हैं ये सब इस्लाम से भटके हैं, पहली बात लिख लें, इस्लाम सबसे पहले था, वहां से भटके, उसके भटकने की वजह क्या थी कि उन्होंने बात बताने वाले को पूजना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, 100 बातों में एक बात है। तो प्यार अल्लाह का है, तरीका नबी से पूछना है, अल्लाह से बात करनी है, किससे करनी है, किसके लिए क्या करना है। तो ये रहबानियत क्या है, ये अल्लाह की हद से बड़ी भी मोहब्बत है। मना मना बिल्ला, अल्लाह पे ईमान आया, इतना आया कि वो कपड़े खाना पीना घरदारी सारी छोड़ी और चले गए जंगलों में, और बीवी बच्चों को नहीं पूजा। और ये जो आप इस तरह के नाम सुनते हैं दीन के नाम पे, वो क्या, वो अल्लाह की हद से, आप हम सोचेंगे कि हमें बहुत कुछ समझ आ गया है, अल्लाह से मोहब्बत भी करनी है और उसका इजहार कैसे करना है, ये बात हमें नबी बताता है। और जब तक इल्म नहीं सीखेंगे, नबी की बात समझ नहीं आएगी। आज मुसलमानों में जितने सेक्ट्स हैं, फिरके हैं, आप नोट करके देखें, उसमें अपने उलमाए कराम और अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी हद से बड़ी हुई ताजीम, कि उसमें शिर्क तक आ गया, सजदे आ गए, उनकी तस्वीरों के आगे खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े होने लगे, इस तरह झुकने लगे, कभी पाओं को हाथ लगाने लगे। तो ये हद से बड़ी हुई चीज बंदे को बाज दफा फिर दीन से निकाल देती है। ठीक है जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी जी
जैसा
जी
कि हमें सबको पता है कि जब कोई बंदा ईमान लेके आता है तो अल्लाह तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है और वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। और इस वक्त ये हमारे सामने बैठे हैं और मैं इनसे कहती हूँ कि ये हमारे लिए दुआ करें, जहाँ कि हम ये जो सुन रहे हैं हम इस पे अमल करने वाले मुसलमान।
आमीन सुमान। असल बात चाहिए देखिए कि अन्नदमु तौबा, हम सबको भी ये मुकाम मिल सकता है, जो ही हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देता है। बस दफा हम चीजों में खो जाते हैं जाहिर में और उसके रिचुअल्स को समझ नहीं पाते। तो इस्लाम बिल्कुल, मुझे इस वक्त ये फील हो रहा है कि एक गाड़ी है इस्लाम की और आपने वो चलानी है, सिर्फ सामने ही नहीं नजर रखनी, पाँव नहीं रखना, आपने ब्रेक को भी देखना है, आपने गियर को भी बदलना है, पीछे भी देखना है, सीधी लेन में टेढ़ी पे तो नहीं। यही सारी बात है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सारी जिंदगी आप अपने आप को चेक करते रहे और उसका मियार आपके वजह इल्म है। बगैर इल्म के जिन लोगों ने अमल करने शुरू कर दिए वो कोई कब्रों के ऊपर जाके बैठा हुआ है, आप जाके पूछें किसी कब्र पे जो बैठा सर धुन रहा है, भंग पी रहा है, चरस पी रहा है, वो कहेगा अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह से प्यार अल्लाहू। कोई किसी बुजुर्ग के नाम पे कुछ कर रहा है, आप कहेगा अल्लाह से प्यार करता है। तो अल्लाह से प्यार का दावा बहुत लोग करते हैं लेकिन अल्लाह खुश किन तरीकों से होता है वो नहीं पढ़ते, बगैर इल्म के अमल करते हैं। जी आप साइमा। आपने बीच का सबक को मिस किया? जी बैठिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। देखिए कि इनका सवाल यह है कि क्या जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे या दूसरों में भी कुछ जाएगा। मैं वही जुमला जो उस दिन भी शायद मैंने 4-6 दफा बोला होगा फिर बोल देती हूँ कि जन्नत में, गौर से समझिएगा, जन्नत में मुसलमान भी जाएंगे, यहूद भी जाएंगे, नसारा भी जाएंगे, और अपने अपने दौर में नबी की तालीमात पे अमल करने वाले, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर नहीं हुआ था। बात वाज़े, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, आपने फरमाया जिन कानों ने सुन लिया और जिन आंखों ने देख लिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गया, फिर वो अगर मुझ पर ईमान नहीं लाया तो उसका ठिकाना आ गया। क्यों? क्योंकि उन नबियों की और उन किताबों की तालीमात का हिस्सा यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना है। आगे आयतें आएंगी आपको इन्हीं मजहब की किताबों में, आज जो नबी सल्लम की आमद की खबरें और काल की राम और कुछ इस तरह के नाम और अवतार जो हैं इनकी किताबों के रेफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे तौरात और इंजील के रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो हम सबको बस आज आखिर में इस बात पे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें ईमान की आजमाइश में नहीं डाला, कि आप ईमान कबूल करें, अपना रास्ता बदले। ये किस्मत वालों को अल्लाह मौका देता है, और साथ ही साथ ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप हमें इस पे जमाए भी रखे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो पूरे सबक का थीम पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। अब अगला हिस्सा आप अगर इन आयतों का देखें तो उसमें कुछ अहकाम आता है जिनका ताल्लुक इंसानी मामलात से, और अभी दरख्त वाली मिसाल से आपको अच्छी तरह पता चल गया कि कुछ चीजें दरख्त की तने में हैं, अकायद है। पूरे कुरान में 4 चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, जिसमें से अब इस वक्त हम जो है वो मामलात वाली चीज यानी शाखों को पढ़ने लगे हैं। क्या है आयत नंबर देखो, ईमान लाए हो, किसको पुकारा है? जिसने ईमान कबूल करने का दावा किया। असल ईमान कबूल करने के बाद की जिंदगी है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से खत्म नहीं होता, शुरू होता है, कुछ करना है ना। जैसे आप कहीं जॉब के लिए ऑफर लें, फिर जब जॉब एक्सेप्ट हो जाती है तो अगले दिन से तो वो कहते हैं अब ये करो वो ना करो, अगर कलमा पढ़ के जाके घर में सो जाना है तो ये तो वो एम्प्लॉय हो गया कि जो जॉब लेटर साइन सारे एग्रीमेंट करके अगले दिन जॉब पे ना जाए। आज हमने ये सोचा कि बस मुसलमान बन जाओ तो जन्नत मिलेगी, नहीं, मुसलमान बन के ट्रैक सीधा हो गया, अब काम करो। करना क्या, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर फर्ज कर दिया गया कसास। क्या है वो, आयत का खुलासा ले लें फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगी। फिल कत्ल, मकतूलों के बारे में, यानी जब कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में तुम क्या कर सकते हो, अब एक सवाल पैदा होता है। और यहां से फिर इन आयतों को पारे की पहली आयत से जोड़िएगा कि अल्लाह ताला ने सयकूलु सुफहाउ मिनन नास में आगे जो बात की थी, कजालिक वजअलनाकुम उम्मतन वसता, तो मुसलमानों को उम्मत वसत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लैसल बिर्रा वाली आयत उसका खुलासा था। इस आयत का नाम भी आयते बिर है, ये मैंने शुरू में शायद जिक्र नहीं किया तो नोट कर लें। यहां से आगे आप पारे के आखिर तक आपको एक सामिस क्या नेकी है, कुछ नेकियां अल्लाह ताला से ताल्लुक की हैं, कुछ नेकियां इन बंदों के साथ है। इसी में से एक उस दौर की जो आदत थी उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पेश किया। होता क्या था कि लोग जब कोई एक मर जाता था तो उसके बदले में, एक के बदले में बहुत सारों को मार देते थे। आप इन आयतों को पढ़ते हुए आप जहन में वही माहौल रखें जहां ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था। इस्लाम बिल्कुल, जिसको आप कहिए कि वो बदल चुका था, अरब लोग इतने लड़ाके हो चुके थे उस दौर में, क्योंकि इस्लाम नहीं था उनके पास अब, कि एक बंदा मरता था, किसी का कोई मार देता था तो उसके बदले में कबीलों के कबीले मार देते थे। कोई एक आजाद मरता था उसके बदले में उसके गुलामों को जाके मार आते थे, कोई एक मर्द मरता था उसके एक बाद जाके औरतों की औरतों को मार देते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों तुमने ऐसा नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर लाजिम कर दिया गया है क्या, अल क़िसासु फिल क़त्ला, मक़तूलों का बदला लेना। ये जो लफ्ज़ है ना क़त्ला, ये कतील की जमा है, यहाँ इससे मानिए मक़तूल, लिख ले जो कत्ल किया गया, यानी मर्डर्ड, जिसका मर्डर हो गया। कुतिबा के बाद अला आ गया, इससे मुराद फर्ज होना, लिखने के लिए आगे आगे ये बात, फर्ज कर दिया गया कि जब कोई किसी को कत्ल करे तो तुम उसका बदला कैसे लो। अब आगे इसकी शरायत, अल हुर्रु बिल हुर, नंबर एक, आजाद शख्स किसी को मार दे तो उसके बदले में उसी आजाद को मारना है। इसके आगे लिख ले कि दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि एक मालिक आजाद शख्स किसी को कत्ल कर रहा था, जब उस शख्स के घर वाले उससे बदला मांगते तो कहते मेरे गुलाम को मार दो उसके बदले में, यानी आजाद शख्स के जुर्म में मुलाजिम गुलाम छोटी जात वाला वो मार दिया जाता, तो ये जुल्म था ना, जिसको उर्दू में आप कहते हैं करे कोई और भरे कोई। इस्लाम ने रोक दिया, नहीं, अगर आजाद ने किसी को मारा तो बदले में उस आजाद को मारा जाएगा। वल आबदु बिल आबद, हाँ, किसी के गुलाम ने किसी को कत्ल किया तो बदले में वही गुलाम मारा जाएगा, कोई दूसरा नहीं। वल उनसा बिल उनसा, औरत कत्ल करेगी तो औरत के बदले में औरत कत्ल की जाएगी। देखिए यहाँ ये नहीं मतलब कि आपके कबीले की एक औरत मारी गई तो आप दूसरे कबीले की किसी और औरत को मार दें, मुराद क्या, जिस औरत ने मारा है वही औरत मारी जाएगी। सारी बातों का खुलासा क्या कि जो किसी को मारेगा बदले में बस वही मारा जाएगा, उसके खानदान का एक या ज्यादा लोग नहीं मारे जाएंगे, उसके साथ यही मामला होगा। ये तो है कानून, इंसाफ है कि नहीं भाई, जो मारते उसको मारोगे ना, ये फर्स्ट सूरत है। कसास का पहला कानून क्या है कि जो शख्स किसी को मारे, हुकूमत तक मामला चला जाए, इस्लामी हुकूमत थी, इस्लाम का निजाम था, पता चल गया कि मिसाल है कि ए ने बी को कत्ल कर दिया, पहुंच गया तो गवर्नमेंट को हक है कि वो उस ए को कत्ल करने का हुक्म दे देगी, इतनी बात वाज है। ये फर्स्ट सूरत है, उसको मार दो, जिस तरीके से उसने मारा उसी से मारा जाएगा, ठीक है, ज्यादती नहीं करनी। दूसरी सूरत क्या है, फमन उफिया लहू मिन अखीही शय्युन, फिर जिसको माफ कर दी जाए कोई चीज उसके भाई की जानिब से। यहां लिखिए अखी ही से मुराद क्या है, मकतूल के वोरसा, बड़ी बात है। पहली सूरत है कि जिसने मारा बदले में उसको भी मार दिया जाए, लेकिन दूसरी सूरत है कि घर वालों में कोई कहता है कि मैं इसको माफ करता हूं, कोई एक ही कह देता है, चार बेटे थे मरने वाले के, कोई एक बेटा कहता है कि मैं कातिल को माफ कर देता हूं, तो अल्लाह कहता है कि फत्तिबाउम बिल मारूफ, फिर तुम उसको माफ कर दो। ये दूसरी चीज आ गई। पहली चीज क्या है? कत्ल के बदले कत्ल। दूसरी क्या आ गई? कत्ल के बदले में माफी। कोई एक वारिस भी माफ कर देगा ना तो माफी हो गई, दूसरे फिर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत, वा अदा इलैहि बेहसान, या दियत दे दो उसकी एहसान के साथ। दियत क्या होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड मनी। शुरू से रिवाज चलता आ रहा था अरब माशरे में कि जब कोई एक शख्स मर जाता था किसी दूसरे के हाथों, तो मरने वाले को 100 ऊंटों की कीमत उसके घर वालों को दे देते थे, ये सोच के कि देखो हमारा तो मर गया, अब तुम्हारा भी हम मार लेंगे, हमें क्या मिला। हाँ, पहले एक के बच्चे यतीम हुए, अब दूसरे के होंगे, तो जिसने मारा है ना कातिल, वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें 100 ऊंटों की कीमत दे देता हूँ, और आपको तक एक ऊंट आज भी लाखों में है। ठीक है, तो इतनी हैंडफुल मनी हो जाती थी कि फिर वो बेवा औरत और यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता था। अल्लाह ताला ने ये बात करके आसानी कर दी और साथ ही कहा ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से कमी है, वह रहमा और उसकी रहमत है। कैसे कमी है? अब नोट कीजिए, इस्लाम से पहले दो मारूफ मजहब थे दुनिया में, यहूदियत और ईसाइत। यहूदियत में कानूने कसास क्या था? कत्ल का बदला कत्ल, ठीक है, या दियत, माफी नहीं थी। ठीक है, बस मारो इसको या माफ कर दो। गोया कि आप कह लें कि मारने की सूरत में कातिल मारा गया और माफ कर दिया तो मकतूल वालों को, बेचारों को कुछ नहीं मिला। क्रिश्चियनिटी में क्या था? कत्ल के बदले कत्ल या दियत, नहीं सॉरी, फिर माफी थी उसमें, दियत नहीं। यानी दोनों कवानीन अधूरे थे। ज्यूस में क्या था? शायद मैंने गलत बोल दिया इसलिए मैं दोहरा देती हूँ। ज्यूस में क्या था? कत्ल के बदले कत्ल या दियत, माफी या फिर माफी, दोनों में झोल है ना। इस्लाम आज तीन ऑप्शंस देता है। आज अगर इस्लाम आता है दुनिया में तो गवर्नमेंट को तीन सहूलतें मौजूद है। नंबर एक, कत्ल के बदले कत्ल, खत्म, बात खत्म, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरी सूरत है कि कत्ल ना करो, 100 ऊंटों की कीमत घर वालों को दिला दो, कुछ मदद हो जाएगी। तीसरी सूरत है घर वालों में से कोई कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम माफ करते हैं, तो ये उसके लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत तरीके से ये सजाएं मुकर्रर की कि कत्ल का सिलसिला रुक गया। जब किसी को पता है कि मैं मारूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो क्या वो मारेगा लोगों को? इस पे आप जाके रिपोर्ट्स देखिए। किसी हद तक आज सऊदी अरब में आपको इस्लाम का निजाम नाफिस दिखता है, पूरे साल में 10-15 कत्ल। और इसके बरक्स आज वेस्टर्न कंट्रीज जहां इतने रिसोर्सेज हैं, एक साल में कत्ल होने वालों की लिस्टें, हम मैंने पिछले साल में पूरी लिस्टें दी हुई है, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, किस मुल्क में एक साल में रिकॉर्ड पे कितने कत्ल आए, आप पढ़ के देखें। लोगों को सिर्फ अल्लाह का खौफ रोकता है, अल्लाह का कानून, पकड़ का डर रोकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब कुछ दे के मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूं कि तुम ये सब समझ जाओ। हाँ, फमने तदाबाद अजाले का, फिर इसके बाद भी अगर किसी ने ज्यादती की तो फलहु अजाबन अलीम, फिर दर्दनाक अजाब है। यानी इन तीनों में से एक भी ऑप्शन ना की, बाद में दियत ले ली, या एक के बदले में 10 को मार दिया। आज भी दुनिया में आप देखिए जुल्म है, कबायली निजाम में कोई किसी कबीले का एक मर जाता है ना तो उसके बदले में जाके उसके 10 को मार देते हैं। नस्लों तक कत्ल का सिलसिला कई गांव में आपने सुना होगा, कोई एक मार दे कई नस्लें उनकी मारते रहते हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और साथ ही का वलकुम फिल किसास हयातुन, और तुम्हारे लिए तो किसास में जिंदगी है। सिर्फ इतना जुमला हाईलाइट कर लें, ये अरब की बलागत का वो जुमला है कि दुनिया की कोई जुबान इसका मुकाबला नहीं कर सकती, कि इस कसास के कानून को दुनिया में लागू कर दो, फिर देखो जिंदगी कैसी होती है। आज कुछ लोग दूर से जो इस्लाम पे बातें करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, कहते हैं इस्लामी सजाएं बड़ी सख्त है, इस्लाम इस्लाम मुस्लिम बड़े टेररिस्ट होते हैं, इस्लाम में बड़ी सख्ती है। वजह क्या है कि ये कत्ल के बदले में कहते हैं मार दो। आज भी इस दुनिया के कई मुल्कों में, एक को तो मैं भी नाम जानती हूँ, कि वहां डेथ पेनल्टी नहीं है। नॉर्वे में कत्ल के बदले में कत्ल नहीं है। 2 साल पहले आपने सुना होगा कि एक शख्स ने कितने बच्चों को मार दिया। आज भी उसके पास डेथ पेनल्टी नहीं है। उनके कानून में किसी को मारना ही नहीं। वो कहते हैं ये जुल्म है, एक खुद मार के, एक ने तो मारा, आप दूसरे को हम मार दें। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि मारने वाले को मारोगे तो अगली दफा लोग दूसरों को मारने से रुकेंगे ना। सीधी सी बात है, ससुराल का डर बंदे को रोक लेता है। कि या उले अकल वालों, अकल से सोचो, होश से सोचोगे तो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन खूबसूरत है, तुम इन पे अमल करो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। आप देखिए कि अल्लाह ताला की जो तरफदारी है ना, वफ़ो दरगुजर पे, माफी कर दो, कोई बात नहीं, तुम माफ करोगे तुम्हें अगला माफ कर देगा। तो इस्लाम मौके के मुनासिब से हालात के ऊपर बात करता है। कुछ आदि मुजरिम होते हैं। अब एक शख्स था, चंद साल पहले आपने खबर सुनी होगी अखबारों में, उसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया। अब 100 माओं की गोद वीरान हुई। आप उसको कि नहीं 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 इस बेचारे को क्यों मारे, तो वो 101 कत्ल कर देगा, 102 हो जाएंगे। राइट, नशा होता है ना। तो देखा जाएगा कि कौन आदि मुजरिम है, कौन डकैतियां करता है, कौन चोरियां करता है, और कौन किसी से कत्ले खता हो गए। आगे आप पढ़ेंगे सूरह निसा में कत्ले खता की बातें हैं, सूरह मायदा में डकैती की सजाएं हैं। तो कुरान पढ़ते जाएं, आपके दिल के दरवाजे भी और जहन के खुलते जाएंगे कि अल्लाह का कानून कितने खूबसूरत असूल देता है। अब ये कानून, ये मौजू एक ऐसा मौजू है कि बराह रास्त इस वक्त हमारा इसके साथ कोई इतना अमली ताल्लुक नहीं। अल्लाह ना करे कि हम में से कोई किसी को कत्ल करे और कराए, लेकिन इसकी डिटेल्स दोबारा सूरत निसा में आयतें आएंगी, वहां होंगी। बस आज के सबक में से मेरे और आपके लिए इन आयतों की रोशनी में इतना है कि इस्लाम ने किसी के कत्ल होने की सूरत में 3 ऑप्शंस दी हैं। कातिल को कत्ल कर दो, उसको घर वालों में कोई एक माफ कर दे तो माफ कर दो, या मकतूल के घर वालों को 100 ऊंटों की कीमत दे दो, या बाहमी रजामंदी पे कुछ भी कम बेश पे कर दो तो बराबर है। और यकीनन ये मामला अदल और इंसाफ वाला है। यहां से ये सीखिए कि इस्लाम छोटी छोटी बातों पे गाइड करता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कानून बना लें। अब आखिरी आयत, आखिरी टॉपिक है आज के सबक का, जिसमें अल्लाह ताला ने हम सबको जीने के साथ साथ मरने के तरीके भी सिखाए हैं। पहले तो इस आयत की रोशनी में ये जुमला सुने कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दीन है, कि जो सिर्फ जिंदगी में पेश आने वाली चीजों पे गाइड नहीं करता, डेथ बेड पे भी क्या करना है और क्या नहीं करना वो सिखाता है। अब इस अगली आयत, आयत 187-182 सारी इकट्ठी है। इसके अंदर डेथ बेड पे एक शख्स है, इमेजिनेशन मिलाए कोई भी मर रहा है, उसके साथ क्या मामला है, वो क्या कर सकता है अपने बारे में, आइए देखते हैं। कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया गया तुम पे, ठीक है। कुतिबा के बाद अला आ गया तो फर्ज का मानी हुआ। इदा हदर अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाए, यानी मौत के आसार शुरू हो जाए, मुराजिया लग रहा है कि अब मौत करीब है। और इन तरह का खैरा, शर्त क्या है कि वो खैर छोड़ रहा है, यहां खैर से मुराद माल है। खैर का लफ्ज अरबी जुबान में माल के लिए भी आता है और भलाई के लिए भी आता है। मुराद यह है कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास माल और दौलत है और उसकी मौत का वक्त आ गया, वो क्या करे। तो फरमाया अल वसीयतु, वसीयत करना है। वसीयत कहते हैं अहम नसीहत को। अमूमन मौत के वक्त जो बात कही जाती है उसको वसीयत कहा जाता है। तो कहा कि वो वसीयत कर दे किसके लिए, लिल वालिदैन, कि मेरे माँ बाप को मेरी जायदाद में से हिस्सा दे दो। वल अकरबीन, और रिश्तेदारों को, कैसे, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, हक्कन अलल मुत्तकीन। क्यों है ये बात, क्योंकि ये मुत्तकियों का एक दूसरे पर हक है। लिख लें कि ये आयत आज मनसूख है। जब इस्लाम आया तो भी कवानीन साथ साथ बन रहे थे ना, मरने वाले की जायदाद के साथ क्या किया जाए, आज भी ये क्वेश्चन है। और वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हुए आपको बहुत अच्छी तरह पता है, अमेरिका का मुझे याद है, कि अगर कोई मर जाए और कुछ ना कह के जाए, उसके बच्चे कुछ नहीं तो सारा माल गवर्नमेंट को मिल जाता है, या बीवी ले जाती है, मुख्तलिफ है ना, एनमी और एमनी और पता नहीं क्या क्या कहानी है। इस्लाम क्या कहता है, ये बीच का है, जैसे रिवोल्यूशनरी दौर है, अभी कानून कुछ नहीं था। जब कोई मरता था ना, पांचवें पारे में बहुत डिटेल्स आएंगी, वाहद मुकाम है जहां विरासत को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसी के साथ वसीयत को भी पढ़ेंगे। बस जहां इतना समझ लें कि इस्लाम से पहले जब कोई मरता था ना, तो लोटी पड़ जाती थी, अपनी जुबान में आप कह रहे हैं लूट मार, जिसके हाथ जो लगता था, चादर पकड़ते थे ऐसे कपड़ा पकड़ के ना, तो यूं उछालते थे इस तरह से, वो चादर उस बेवा के सर पे जिसकी पड़ती, बहुत सारे लोग फेंकते थे खानदान के, जिस औरत जिस मर्द की चादर उस औरत के सर पे गिर जाती थी ना, कहते थे अब ये मर्द उसका वाली वारस है, उससे निकाह करे, उसको महरूम कर दे, उसको बेदखल कर दे, उससे अपने बेटे की शादी कर दे, बच्चे की कर दे, जो मर्जी करे, वो औरत बोल नहीं सकती थी, इतना जुल्म था। छोटे बच्चे जो होते थे मरने वाले, कि उसके जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था, सिर्फ बड़े बेटे को मिलता था जो जंग के काबिल है। इस्लाम ने तदरीजन इस हुक्म को मना किया कि वसीयत कर दो, आज नहीं कर सकते वसीयत, ये बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, बस इस आयत में इतना बता दिया कि मौत के वक्त में जो वसीयत की जाए वो अदल और इंसाफ वाली होनी चाहिए। आयत 181 को देखिएगा, फमम बदलहू, बस जिसने इस वसीयत को बदल दिया, हु को लिखी लिख लीजिए आगे, वसीया वसीयत की तरफ इशारा है, कि जो इस वसीयत को बदल दे, बाद अमा समिया हो, इसके बाद कि उन्होंने इसको सुना, फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, बस इसका गुना उन लोगों के सर पे है जो इसको बदल दे, इन्नल्लाह समीउन अलीम, वो मरने वाला तो मर गया वसीयत करके, लोगों को नहीं पता उस, लेकिन अगर तुमने वसीयत में कोई तब्दीलियां कर दी तो अल्लाह को खूब अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या दो बातें इस हिस्से में समझ आई, कि मरने वाला अगर गलत वसीयत कर जाए, नंबर एक, किसी का हक मार दे, दूसरी बात है किसी गुना की वसीयत कर दे, कोई कहता है मेरे माल से एक शराब खाना खुला दो, कोई कहता है मेरे माल से आप समझें कि चोरों को कोई एक गैंग बना दो, कोई भी मिसाल दी है, अब उस वसीयत को बदलना पड़ेगा। ठीक है, गलत वसीयत कर दे तो ठीक कर दो, इसी का जिक्र अगले हिस्से में, इसको पढ़े तो ये पूरा मजमून इकट्ठा हमारे सामने आ जाएगा। फमन खाफ अमिम मोसे, पस जो कोई डरे वसीयत करने वाले की तरफ से, मोसिन वसी वसीयत से, वसीयत करने वाला किस चीज से डरे, जनफन झुकाओ, यानी सारा माल किसी एक को ही दे देता है, या किसी वारिस को महरूम कर देता है, या वारिस को और भी वसीयत से हिस्सा देना चाहता है, कुछ भी, यानी गलत वसीयत करे, औ इस्मन, या गुनाह की वसीयत कर दे जो मैंने अभी मिसाल दी, तो क्या करो, फसलह बैनहुम, तो उनकी इसलाह कर दो, तो क्या होगा, फला इस्मा अलैहि, फिर इस पे तुम्हें कोई गुनाह नहीं है, इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। चलिए अब अपने लफ्जों में बताती हूँ, पहली बात यह है कि वसीयतों के लिए वसीयत करो, ये हुक्म अब नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ने हर साहिब हक को उसके हक दिला दिए। ठीक है, अब क्या हुक्म है, अब पांचवें पारे तक आप कहाँ सबर करेंगे, सबर तो होता ही नहीं हमसे, तो बता देती हूँ। आज मेरे पास अगर 100 पाउंड है, मिसाल है इस लिफाफे में 100 पाउंड हैं, ये मेरे हैं, इन पाउंड्स को मैं कहाँ खर्च करूँ, किसको दूँ, खुद खर्च करूँ, अल्लाह के रास्ते में दूँ, अपने एक बच्चे को दे दूँ, दूसरे को, बेटों को ही सिर्फ दे दूँ, बेटियों को दूँ, कुछ भी कर दूँ, ये मेरे हैं, ये मेरी मर्जी है, गुनाह पे करूँगी तो गुनाह होगा, दो बेटे हैं, एक बेटे को दूंगी दूसरे को नहीं दूंगी तो जवाब दे, ये दूसरा बेटा कल क्यामत के दिन मुझे पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ गई। अब ये 100 पाउंड मैंने संभाले हुए थे कि मेरे कहीं बुढ़ापे में काम आएंगे, दिस एंड दैट, और इससे पहले मेरी मौत का वक्त आ गया, अब ये 100 पाउंड मेरे नहीं रहे, इसमें से स्टिल कितने हैं मेरे, 33 रुपए 33 पैसे, 33.30, यानी मरने के बाद मेरा अपना मेरे माल में से 1/3 रह जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरे पास, चले 100 तो क्या कहेंगे, 1000 पाउंड है, मिसाल है, मैंने रखे हुए काम आ रहे हैं मेरे पास है, चल रहे हैं, अब मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद ये पैसे किसी को मैं दूं, तो मैं सिर्फ इसमें से 333.33 दे सकती सकती हूँ। नंबर एक समझ आ के बाद सिर्फ 333 में रहे, नंबर एक शर्त समझ आ गई ये बात, ठीक है। पहली शर्त के 1/3 ही है, दूसरी सूरत चलिए। अब ये 333 मैं किसको दूं, मरने के बाद लिखती हूँ किसके नाम पे, मैं किसी वारिस को नहीं दे सकती कि मेरे बेटे हैं उनको बाकी पैसों में जो मिलने हैं उसके अलावा ये मेरे एक बेटे को 333 भी दे दे, आई कैंट। मैं अपने मार बाप को नहीं दे सकती क्योंकि उनको मेरी वसीयत, मेरे विरसे में 666 जो बच रहे हैं ना उसमें खुद ब खुद मिल रहा है, मेरी माँ को भी 1/6 मिलेगा, मेरे बाप को भी मिलेगा, फिर मेरे शोहर को भी 1/8 जो 1/4 मिल जाएगा, बाकी सारा बच्चों में 2:1 की रेशियो से खत्म होगा। ये है टोटल इस्लामी विरासत जो हम पढ़ेंगे, अभी घबराए नहीं, ठीक है। 33, अब इसमें से मैं कुछ नहीं कह के मरती, किसी को कुछ नहीं कहती, तो ये 333 भी मेरे वारसों का है, ये बात है सारी बात। वैसे मरने के बाद आपके अपने माल में से 1/3 रह जाता है, उसको देने की दो शर्तें हैं, नंबर एक वारिस को नहीं दे सकते, दूसरी सूरह यह कि गुनाह में नहीं दे सकते। और समझ नहीं आती तो फिर वेट करें 5वें पारे का, ठीक है। बचाए ना दुनिया में दे दें, जिसको जो देना लेना इधर ही दे दें अल्लाह तला, और गलत वसीयत कर दे। मैं कहती हूँ ये 333 रुपए लें और इससे जाके नाइट क्लब खुलवा दें, तो आपको पूरा हक पहुंचता है कि आप उसको बदल दें। किसको दें, क्या जो 333 है मैं दू, ये अच्छा सवाल है कि मेरे पास है, मुझे वसीयत का फर्क नहीं समझ, इसलिए ये क्वेश्चन है। विरासत तो अल्लाह ने बांट दी है, वो तो उस पर तो भी नो क्वेश्चन, वो 5वें पारे में पढ़ेंगे। वसीयत के हुक्म में ये तदरीजी आयत है, इंटरफेस है, अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे 5वें पारे में फिर ये आयत आएगी थोड़े मफहूम से। अब मैंने 333 देने हैं तो मैं किसको दे सकती हूँ, नंबर एक मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहती हूँ, किसी मस्जिद को देना चाहती हूँ, किसी मदरसे को, किसी स्कूल को, मैं अपनी फूफो को देना चाहती हूँ, मैं अपनी खाला को देना चाहती हूँ जिनको मेरी विरासत से नहीं मिलना था। अब कहता है कि मरने के बाद आपके माल में से डायरेक्ट हिस्सा आपके माँ बाप शौहर या बीवी दोनों में एक है, और उसके बाद बेटे और बेटियों को मिलता है, ओनली ये 6 हिस्सों में आपका सारा माल बटेगा। हाँ बच्चे नहीं है तो फिर तो बहन भाइयों तक जाता है, अदरवाइज आपके माल में बहन भाइयों को लग नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरी कोई बहन बीमार है, मेरा कोई, मेरी बहन कोई भी गरीब है, भाई है, खाला का बेटा, पुप्पो का, कोई मिलने जुलने में मैं इन 333 में से नसीहत कर सकती हूँ कि 100 इनको दे दें, 200 उनको दे दें। ला वसीयत ली वारिस, दो लफ्ज है, कोई वसीयत नहीं है वारिस के लिए, ठीक है, क्योंकि वारसों को मिल रहा है से, तो इसको अल्लाह के रास्ते में दूं, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दूं, दोस्त को दे दूं, साथी को दे दूं, नो प्रॉब्लम, मैं दे सकती हूं। लेकिन जिनको अल्लाह खुद दे रहा है उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहरहाल यहां से देखिए कि दीन इस्लाम कैसा है। ये इस वक्त हमने ये आखिरी दो हुक्म कौन से सुने, मामलात है ये, ठीक है। शुरू में बात इबादत की हुई, बीच में आई, तो आप देखिए कि आपको पूरे इस्लाम में यही चीज देखेगी कि कहीं बंदों के मुतालिक का हुक्म सुनते हैं, कभी अल्लाह ताला के। ये नहीं कहा कि बैठ के सिर्फ नमाजें पढ़ते रहो, मस्जिदों में बैठे रहो, ये भी नहीं दीन, और कहीं खुली जगहों पे चले जाओ, और ये भी दीन नहीं कि सारा वक्त लोगों के साथ ही हक अदा करते रहो तो अल्लाह को ना दो। तो अल्लाह और बंदों के हकूक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस्लाम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इसकी कदर की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। कमेंट्स लिखिए, आप नहीं लिखेंगे आपका नुकसान होगा, सच बता रही हूँ, आपके जहन नहीं खुलेंगे। मैं नहीं पढ़ती इधर, आपको नहीं अच्छे लगते ना अपने कमेंट्स लिख दें, ताकि कोई अच्छा हो तो कम से कम उसको लिखा जा सके। और इस वक्त ये है कि ब्रेक का वक्त है हमारे पास, ब्रेक से पहले हम नमाज पढ़ेंगे, अभी अजान होगी, अजान के साथ ही हम सब फर्ज पढ़ के फिर जिनकी नमाज नहीं या कोई और वजह वो ब्रेक में से खाना लेके शुरू कर सकते हैं, नमाज के बाद ब्रेक। देखिए सख्ती से वक्त पे नजर रखें, 1:20 हुए हैं, 10 मिनट नमाज के हैं, नमाज के बाद हमारी, क्योंकि कुछ लोग नमाज में इधर होंगे, तो 15 मिनट यानी 45 पे दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़े बना लेते हैं।